ভব কুঞ্জ বিহারে গোপীজন ভুলভ গিরিহর ধারে যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনা তীরা ঘন চারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি গোপীজন বল্লভ গিরিধর ধারি মাধব কুঞ্জ বিহারি গোপীজন বল্লভ গিরিধর ধারি যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনা তীরা বন চারি যমুনা তীরা বন চারি মাধব কুঞ্জ বিহারি গোপীজন বল্লভ গিরিধর ধারি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पद जय प्रभु पद पद हरि 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 पद हरि विष्णुपाद परमहंस प्रियराज काचार्य स्त्रोत्र सतीश दुबायन गृह सभा चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहीं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So warm welcome to all of you. The topic for the next 2 days, including this evening, is Nectar of Devotion. This is a very wonderful book written by Srila Prabhupada, based on the original Bhakti Rasamrit Sindhu, composed by Srila Rupa Goswami. How many of you have heard of Nectar of Devotion before this? How many of you have heard of this book, Nectar of Devotion? How many have not heard at all? You've never heard of this book before. Okay. 6-7 people. Can you give some place for Dr. Behra to come? How many of you have heard of Bhakti Rasamrit Sindhu, the original? How many of you have actually read Nectar of Devotion before? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is a very, very important book for all of us, because in a very clear, concise, and yet a detailed way, it gives an excellent exposition on bhakti. What exactly is bhakti? The Vaishnava scriptures, like the Srimad Bhagavatam, contain a lot of nice information about how great devotees perform devotional service or bhakti. But a detailed analysis with examples is done in a very excellent fashion by Srila Rupa Goswami. Understanding, therefore, the importance of Rupa Goswami is very important. Rupa Goswami is the prominent acharya in our parampara. In ISKCON, we are followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is none other than Lord Krishna himself, who has come to teach people in this world how to perform bhakti to Sri Sri Radha and Krishna. And he has taught his disciples and his followers, and his followers, led by Rupa Goswami, have written many, many wonderful books explaining the science of devotion to God. In recent times, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada took the essence of these books, wrote it in the English language for the understanding of the modern man, and spread these teachings all over the world. Those of you who have a copy of the Bhakti Rasamrita Sindhu, the Nectar of Devotion, you may please bring your copy with you. We will try to go systematically. Of course, because the book is very vast, so we will be able to cover only a few pages in these 5 days. But we will try to cover just some basic concepts, so that even if you are coming new, you will try to appreciate how deep is the science of bhakti. Bhakti is not just something that is sentimental. Many times, people have the wrong impression that Jnana Yoga is for those who are intelligent and Bhakti Yoga is for those who are emotional and sentimental. Have you heard this argument before? But that is not a fact. Actually, Bhakti Yoga is for those also who are very, very intelligent, the most intelligent. Because the perfection of knowledge, perfection of intelligence, is to surrender to Lord Krishna and to love Him and serve Him. So the science of bhakti has to be understood. And since everybody today is talking about scientific point of view, we have to understand bhakti in a very systematic and scientific way. And if you read Nectar of Devotion, you will come to understand what a great and deep science it is. And people who simply criticize it as being meant for those who are sentimental and emotional are doing so in complete ignorance, because they do not know, they have not studied these books. So Bhakti Rasamrita Sindhu is that great contribution of Srila Rupa Goswami, who was the foremost among the disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was actually a minister in the kingdom of a Muslim Nawab in Bengal called Nawab Hussain Shah. His elder brother, Sanatan Goswami, was also another important minister. And these two brothers practically ran the whole kingdom of the Nawab, especially when he was traveling for his various military expeditions. And they were so expert that the Nawab could not do without them. Actually, they hailed from a Brahmana family that was originally from Karnataka. And they had migrated to Bengal many generations ago. They were actually great scholars, not only in Sanskrit but also Persian, Arabic, and even in practical and worldly matters they were very expert. But they were also very spiritually inclined. When they heard about and saw Sri Chaitanya Mahaprabhu, then they resolved that now our life is useless unless we can give it completely at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So they harbored this desire in their mind for a long time to come. And somehow or the other, because the Nawab Hussain Shah was not willing to let them go, so they had to think of a plan by which they could go very quickly. Srila Rupa Goswami divided his wealth in an exemplary fashion. 50% he kept for the service of the Lord, 25% for the service of the devotees and the brahmanas, and 25% for personal emergencies. He had also kept a stock of wealth for his brother Sanatan Goswami in case he needed it for something. And Rupa Goswami left the kingdom and went away to Vrindavan. On the way he reached Prayag. At Prayag, Allahabad, at the Dashashvamedh Ghat near the Tribeni Sangam, Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed Rupa Goswami for 10 continuous days. Rupa Goswami's earlier name as the minister of the Nawab was Dabir Khas, and Sanatan Goswami was known as Sakar Malik. Although they were born in cultured Hindu Brahmana families, but because they were serving under the Muslim king, they had got these names. So once Rupa Goswami left, Sanatan Goswami was alone and he was making his plans of how to leave. And eventually with great difficulty, he also left and he joined his younger brother Rupa Goswami in Vrindavan. Sanatan Goswami heard from Sri Chaitanya Mahaprabhu in Varanasi for 2 months. Rupa Goswami was instructed by Chaitanya Mahaprabhu to come to Vrindavan, which is the holy place of Lord Krishna. And all the 6 Goswamis, led by Rupa and Sanatan Goswami, were instructed by Sri Chaitanya Mahaprabhu with certain responsibilities while they were living in Sri Vrindavan Dham. Mahaprabhu told them, first of all, you must rediscover all the lost places of Krishna's pastimes. Krishna has performed many, many activities in Vrindavan when he appeared here 5,000 years ago. But now all these places are lost. Nobody knows where they are. So you must rediscover these places. Sri Chaitanya Mahaprabhu had already himself discovered many places and indicated that to his followers. Secondly, he told the Goswamis that you must establish proper worship of the deity and temples in Vrindavan so that others may come and also benefit for the sake of preaching. He told them also to establish the proper behavior and methods of worship and sadhana for the devotees who want to attain perfection in life. He also told them to study all the various scriptures, extract the essence of that and write devotional literature for the education and enlightenment of the people at large. and especially for the community of devotees. So they may know in a very systematic and scientific way how to progress in the path of bhakti very, very clearly. So in pursuance of these orders, the six Goswamis did all these things. And especially as far as writing of books was concerned, their output was very profuse. I had given the hot water bag. Can you please ask them to give? Of course, they also established many temples. In fact, before the six Goswamis came to Vrindavan, there were no temples in Vrindavan 500 years ago. It was just like a jungle place. And the six Goswamis came, and Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, they set up temples like Radha Govinda Temple, Radha Madan Mohan Temple, and so on. And then Vrindavan again came to life after many, many years of Krishna's departure from this world. So one of the great books that Rupa Goswami has written is this Bhakti Rasamrita Sindhu. And it is necessary for all devotees of ISKCON to study this book. Srila Prabhupada used to say that Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Nectar of Devotion, these are very, very important books for devotees to study. Rupa Goswami has also written another book called Nectar of Instruction, Upadesha Amrit. As this is Bhakti Rasamrit Sindhu, that is Upadesha Amrit, Nectar of Instruction. Srila Rupa Goswami was very dear to Chaitanya Mahaprabhu. One time, when Sri Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, was living in Jagannath Puri, and he used to sometimes dance in front of Lord Jagannath, particularly when the Sankirtan was going on at the time of Rath Yatra, and he would recite many verses expressing his devotion for Lord Krishna. And nobody around him could understand what these verses were, except for one or two of his intimate associates like Swarup Damodar Goswami. And one day, when Rupa Goswami was visiting Jagannath Puri, he was living in the place of Haridas Thakur, who was also another great associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he would stay there and get the association of Haridas Thakur. And Chaitanya Mahaprabhu would come every day to meet them. And one day, when Chaitanya Mahaprabhu came there, he saw that in the roof of the thatched roof of the hut in which Haridas Thakur used to stay and where Rupa Goswami was also staying for the time being, there was a palm leaf. And on this palm leaf, there was a verse inscribed. As you know, in those days, there was no paper. So they would write on palm leaves. And he read this verse. And immediately he exclaimed in astonishment that, "Rupa, how did you understand the innermost feelings of my heart? This is very confidential." Because Rupa Goswami had actually explained the meaning of one verse that Chaitanya Mahaprabhu used to chant in front of Lord Jagannath, and nobody understood really the meaning of that verse. But Rupa Goswami wrote another verse explaining the meaning of that verse. And when Chaitanya Mahaprabhu read this, he was astonished. And lovingly and gently he slapped Rupa Goswami to say, "How did you understand the innermost feelings of my heart?" And at that time, Haridas Thakur said, "My Lord, this is because he has received your mercy. So he has understood the intimate aspects of devotional life." So Rupa Goswami was very dear to Mahaprabhu, and he was especially empowered by him to write devotional literatures. So therefore, Srila Prabhupada explains that in this Gaudiya Vaishnava Sampradaya, we are called Rupa Anugas. Rupa Anuga. Anu means to go behind, and Ga means to go. So Anuga means follower. Rupa Anuga means followers of Rupa Goswami. So we are actually followers of Rupa Goswami. He is the one who has majorly set the standards for our devotional life. Unless everything is clearly established, it is difficult to follow. So Rupa Goswami has made the path of bhakti crystal clear for everyone. And the succeeding acharyas have also given a lot of beautiful commentaries on this. There are commentaries of Vishwanath Chakravarti Thakur. There are commentaries of Srila Jiva Goswami. And in recent times, only about 30 to 40 years ago, Srila Prabhupada wrote his commentary, or rather it is a summary study of Nectar of Bhakti Rasamrita Sindhu. And in this, Srila Prabhupada has not only put his own comments, but he has also drawn from the commentaries of Srila Jiva Goswami and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. So the nectar of devotion is like the combined essence, the nectar of not only Rupa Goswami's works, but also of some of the other Goswamis. So Srila Prabhupada used to emphasize how it is so important for us to study this book. When you open the book, you will first find the preface. It is necessary for us to read this preface. Because here, he is first of all giving us a background about Rupa Goswami and his importance and why we should read books studied, written by him. And then he goes on to explain the meaning of the term Bhakti Rasamrita Sindhu. The nectar of devotion is a rough, approximate translation of this word. Bhakti Rasamrita Sindhu. The word Sindhu means ocean. Amrit means nectar or eternality. Ras means it's a kind of taste, and we will discuss this now. And bhakti means a form of devotional service. We will again discuss all these terms. Because bhakti is a science, we must very clearly understand all the terms. In science, every term is clearly defined, isn't it? When you study physics, you have to define what is velocity, what is force, what is momentum. It has to be clearly defined. Similarly, here also, we are talking of bhakti rasamrita sindhu, so all the words have to be clearly defined, clearly explained and understood. To start with, in the preface, Srila Prabhupada explains in one sentence only that bhakti means devotional service. And later on in the introduction, after the preface is over, then he will go in detail on this one sentence. He will expand on that one sentence, what it means to render devotional service. So in the course of the next five lectures, including this one, we are going to closely follow the Nectar of Devotion as written by Srila Prabhupada and also add a little bit more from the commentaries of Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur to make things clear. So I would advise that if some of you have this book with you, you may kindly read it before you come. And if you don't have, you may acquire one and try to read. Especially the first part, which is a little over 100 pages. At least that part, all devotees or aspirants of the devotional path, you try to understand. Even if you can't read the other three parts of this book, at least part one, the first few chapters, 19 chapters at least, we must try to read and understand thoroughly. So then Prabhupada talks about ras. What is the meaning of ras? Now in generally all of us know, what is the meaning of ras in everyday language? Juice, isn't it? So the word ras generally is used in connection with some fruit, for example. The ras, the juice of the fruit, is usually the most relishable part of the fruit. We like the fruit because of its juice. It is a juice that gives the taste to the fruit, isn't it? Otherwise there is no taste in something. Once the juice is taken out, there is nothing left. If you squeeze a sweet lime and take out all the juice, what is remaining, there is hardly anything left, the pulp, and you eat that, it will not be as tasty. So the ras or the juice is what gives taste to the fruit. So in this world, relationships that we have are also like a fruit. In these relationships, there is some taste, some pleasure that we enjoy. Like sometimes fruits can be bitter or fruits can be sweet. Same way relationships in this world are sometimes sweet and sometimes bitter. But there is something about each relationship which gives us some pleasure, which gives us a taste. And the taste of that pleasure is called ras. So now the term ras is being explained in connection to relationships rather than the physical fruit. So in relationships, there is always some kind of ras we are looking for. Otherwise, we will not enter into any relationships with anyone. There are different kinds of relationships in this world. And one person is not satisfied with only one relationship. We will see about the different kinds of relations existing here in this world and also in the spiritual world. So when we have relationships, we are trying to enjoy a certain taste from that. And Prabhupada explains that because of that taste, which is attractive, every person is motivated to work, to further that relationship. So that ras that is there in a relationship is a force that drives people to work. And Srila Prabhupada explains that a family man, a person who has a family, he goes out to work in a job or he does a business. He is working very hard to maintain himself. Why? For what purpose? Out of love for his family, because he has to maintain his family. So because there is some sweet taste he gets in his relationship with his family members, so he works hard day and night. For what purpose? So that the money that he earns as a result of this endeavor, he can use to keep his family members happy. I will come back at the end of the day and I will give my small child a gift, a toy, and he will be very happy. And to see the child's happiness, then he gets a certain taste. Or he will bring a birthday gift for his wife. And when she is happy, then he also gets a certain taste in that. He gets a certain happiness. Or in the evening, he will take his family members out to the garden or the park or the cinema. And because when he sees them happy, he is also experiencing a certain happiness in that relationship. Similarly, a person is working for some social cause, for the downtrodden, for the poor, for the sick, and so on. And he gets a certain kind of satisfaction in working for these people. Although he may not gain anything monetarily, but some ras he is getting out of that seva. He is doing some service, and he's getting some taste out of that, some satisfaction. And that satisfaction is driving him to do that activity. So ras is that force which drives the family man, the nationalist, the philanthropist, and so on, to do their respective activities. It's a very beautiful analysis of ras here. So Srila Prabhupada distinguishes ordinary ras from spiritual ras. In other words, he is distinguishing material relationships from spiritual relationships. In this world, we only have experience of material relationships. We have no experience of spiritual relationships in general. And Srila Prabhupada says the two are quite different. One is called mundane ras. Mundane means material ras. I gave some examples shortly. But Srila Prabhupada explains that mundane ras is very temporary, because it is there now and gone tomorrow. Ultimately, at the end of our life, death will come and everything will be over. We see in this world that people are mad for so-called love. Poets have written for so many centuries about it. The cinemas are selling their tickets only because of the so-called love stories. a young man and a young woman come together and they experience some very great rush, some great attraction that drives them to do all kinds of things which other people think are foolish. But they don't think it is foolish. They will jump and dance and go around trees and do many things, sing songs. There is some force that is driving them to do all these things. But eventually, Prabhupada says, what happens? Although initially the taste is very sweet, love is blind, they say. So people are willing to do anything for the sake of that so-called love. They will give up their other family members. They will commit murder sometimes. Many, many things happen inspired by this so-called love. People write poetry, people do all kinds of things. Wars, great battles are fought for the so-called love, isn't it? Between kings. So it is a very deep thing, this material rush. But ultimately, it cannot endure. One day, either there will be divorce, or there will be some quarrel, or even if there is no divorce or quarrel, death will come. And when death comes, everything is finished. Then where is that relationship? Srila Prabhupada explains that atheists do not believe in God, but God will come to them. He will come to them as death. And for devotees, they are experiencing God in their life every day, every moment. So for them, death is just a gateway to the kingdom of God. So devotees are not afraid of death. But non-devotees are very afraid of death. Because they see that when death comes, their temporary rush, their mundane rush will be completely spoilt. Imagine that there are two people, one man and woman, who are very much in so-called love with each other. When one of them dies, how much grief the other one has to undergo? How much suffering? How much sorrow? So ultimately the so-called sweet rush of the worldly relationships becomes very bitter at the end. Eventually it must. Even if there is a relationship between two people that has lasted a whole lifetime, but still death will come. Death is the ultimate destroyer of all relationships. It is that one thing that will always make our sweet rush into bitter rush. And nobody can avoid death. Therefore, it is temporary. This rust will not last for long. And nowadays, as people are becoming more and more godless, more atheistic and materialistic and sinful, we find that the more people are going for this temporary rust, the quicker it is becoming bitter. Nowadays also you find, even in India, so many divorces, so many quarrels. Even within a family, there is so much difficulty now. Brothers are fighting, children are fighting with the parents, husband and wife are fighting. So there is quarrel at every stage. The sweetness of the relationships is getting destroyed faster and faster as this Kali Yuga is progressing. Nowadays, hardly any relationships are enduring at all. More and more suffering is coming up. So we can see that proportionately, the more we become godless, the quicker our so-called sweet rush of this world will become bitter. So the mundane rush, the mundane relationships of this world, they are temporary. And the second point Srila Prabhupada explains is that this rust is oscillating. Because by nature, we cannot be satisfied by the enjoyment of this world. We may get temporarily allured by it, but after some time we get tired of it. Just take the example of a small child who sees a toy in a shopping complex window and he starts fighting, "I want this toy, I want this toy." And the parent is saying, "No, no, no." But he is very keen and he cries and shouts and screams. And finally the parents say, "All right, we will buy you this toy." And they give him this toy. And he is very happy that he has got this toy. And whole day and night he is simply playing with this toy. Then what happens after a few days? Can you tell me? What happens? Can you speak up?
He sees new toy. New toy. And
then what happens with regard to this toy? He loses interest. He loses interest. He doesn't find that toy so attractive anymore. Few days he is very attracted. Whole day and night he is playing. But after some time, he loses interest. Now he wants something else. So fundamentally, according to Bhagavad Gita, anything of this world cannot give you lasting happiness. Because it is mundane. The rest that he is deriving from his relationship with that toy is temporary. And it will not satisfy him for long. It cannot completely satisfy. Therefore, after some time, he renounces that toy. So when he is enjoying that toy, it is called bhog. And when he renounces that toy, it is called tyag. So he says, oh, now I don't like this toy anymore. He loses interest. But then, he still wants another toy. So the desire for bhog has not gone from his mind. It is not that he doesn't want any toys now. But he wants a different toy, that's all. So again he cries, I want this toy, I want that toy. So again there is bhog. But after some time, the same story. There is tyag. So it is like the pendulum of a clock. Tick, tock, tick, tock. So bhog, tyag, bhog, tyag, bhog, tyag. That is what is going on in this world. The example of the small child is the example of every living entity in this world. We should not think it is only for a small child. For all of us, the same thing is happening. We are enjoying the objects of this world, and we think we are enjoying and we are happy for some time, but because it cannot give us lasting happiness, the rust, the mundane rust is temporary, so we lose interest and we want to renounce it. We give it up. Prabhupada gives the example that materialistic people work very hard for 5 days a week or 6 days a week. And in the weekend they go to some place for a holiday and enjoy. And come back again, work hard. So they renounce their work for 2 days because they don't get complete happiness in that. So they are going, coming, going, coming. This bhog tyag. The nature of material happiness is, it is flickering, temporary. Chapala sukha, Prabhupada says. There is one very famous prayer, which we all sing. Vifale sevinu kripana durajana chapala sukha lava lagire. What is the meaning of that? The great poet Narottam Das Thakur is praying. He says that unnecessarily, fruitlessly, for no good purpose, I have served wicked men in this world. For what purpose? Just for chapal sukh. Chapal means restless, chanchal. That which is temporary, flickering. There today, gone tomorrow. So just for a little fleeting few moments of so-called happiness, I have sold myself to wicked people and I have been serving them for so long. So this chapal sukh, so all the pleasure of this world is chapal sukh. And that is the thing Prabhupada is explaining here. That bhog and tyag is going on. And why do we not be satisfied? Why are we not satisfied with bhog? And why are we not satisfied with tyag? Prabhupada explains, we are not satisfied with bhog because bhog is not our constitutional position. We are not meant to be bhogis. So we are not satisfied when we do bhoga. So okay, the question may be raised. Then why not be satisfied when you are doing tyag? If bhog is not your constitutional position, then give up that bhog. So tyag, you should be at least stable in that tyag. So Prabhupada says no. Even in tyag we are not stable. We want to come back to bhog. Because even tyag is not our constitutional position. So neither bhog nor tyag is our stable equilibrium position, to use your language. Equilibrium state. Any other state, you displace an object from its equilibrium state, what happens? What is the natural tendency of an object that is displaced from its equilibrium state.
Oscillate.
And what is it? The reason for the oscillation? It tries to come back to its equilibrium state, isn't it? So, the bhog situation and the tyag situation are disturbed states, not the equilibrium states. So, we are oscillating between bhog and tyag, which are the unsteady states. Because the equilibrium state is not known to us, so we are not engaging in activity that is corresponding to our equilibrium state. So the soul is neither meant to be an enjoyer of this world, neither the soul is meant to be a renouncer of this world. In the Bhagavad Gita, Krishna explains, Purushah prakriti sthohi bhungte prakriti jargune karanam gunasangosya sad asad yoni janmasu. When the soul falsely thinks itself to be the enjoyer, Purushaha, Bhunkte, Prakriti, Bhunkte, wants to enjoy this material nature, Prakriti, then he is forced to go into this material world and become, enter into various species of life, lower and higher species of life. So this is the important point. Bhoga is not the constitutional position. At the same time, the jiva cannot remain in vacuum. By giving up bhoga, what can you do? For example, if you are suddenly sent into outer space and you are just there in outer space, you cannot do. You have to be on some planet. You have to have a stable footing. So what is that footing? What is that constitutional activity of the soul, which is the equilibrium position for the soul, in which whatever rasa that he enjoys will be stable and permanent? What is that position? Can anybody say? Yes. What is that one verse, line of that shloka? What is the constitutional position of the jiva? Jivair swarupa hai Krishner nitya das. So this is the equilibrium state. The constitutional position of the soul is that he is eternally a servant of Lord Krishna. So what is the activity that a servant performs? This is the state, being servant. But what is the activity that is performed? Service. So when a jiva performs service to Lord Krishna, he acts as a servant does towards the master, then that is the constitutional position and activity of the soul. So such service, which is performed in devotion, is devotional service, which Srila Prabhupada translates as bhakti. So bhakti means devotional service. So whatever activity is done in devotional service gives us eventually real happiness. And as we can see here, how is that different from the mundane ras? You see here, what is a mundane ras? It is temporary. But bhakti ras is eternal, because it doesn't get destroyed even with time. Suppose you love somebody in this world. So when you die or he dies, then that relationship is finished practically. After death, that relationship is gone, because the person himself is not there, the body is not there, and that ras is based upon the body. Therefore it is temporary. But if your love is towards something that is permanent, eternal, that is Krishna, then it will survive even your own death. Because Krishna never dies. He is eternal. So if you love Krishna, your soul is also eternal. So you will get another life. And in that life, you can continue your service to Krishna. And that can go on eternally. So therefore this bhakti ras, the taste that you get, the pleasure that you get out of serving Lord Krishna in the process called bhakti, that is eternal. In the second chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains, Nehabhi kramanashosti pratyavayo na vidyate svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. He says, that this bhakti process is so wonderful that if anybody performs even a little bit of this, svalpam api asya dharmasya, this Bhagavad Dharma, if he performs even a little bit of it, it protects him from the late greatest danger, which is of taking birth in a lower species of life and losing the chance to continue performing bhakti in the next life. Because you see, an animal or an insect cannot perform bhakti like human beings do. Now here you will find only human beings sitting and hearing the lecture. Even if there are mosquitoes, they are not hearing the lecture. Although they will also benefit by being here when there are spiritual sound vibrations. But the mosquitoes don't sit like this nicely to hear a pravachan. Only human beings can do. So there may be the fear that this bhakti ras also may be temporary, because after I die, what happens? So Krishna says, don't worry. If you have done bhakti in this life, if you have served me in this life, even in the next life, your service to me will be continued. That is guaranteed. So you will continue in the next life from where you left off in the present life. So therefore, your continuation of tasting this ras of service to Krishna is assured and guaranteed by Krishna in the Bhagavad Gita. And because this bhakti is our constitutional activity, therefore it is fixed and not oscillating. Like an object in the equilibrium position does not oscillate. It remains in that position. So also, because we are now in the equilibrium state, the jiva, being a part and parcel of Krishna, has a constitutional obligation or activity of serving Krishna, and that is the fixed state for the jiva. So no more oscillation. So this concept is clear? Yes? So the difference between the ras of this world and the ras that is there in connection with Krishna. So to summarize, mundane ras is temporary and oscillating, and bhakti ras is permanent and fixed, not oscillating. Then Srila Prabhupada goes on very nicely to make a very good analysis of the basic propensity, given that our constitutional position is devotion. He says that our struggle to love somebody in this world means that basically it is a striving to reach that constitutional position. We don't know, out of ignorance, everybody who is trying to get love in this world is trying to become a devotee of Krishna. Only thing is, because of ignorance, he doesn't understand that it is Krishna I am looking for. Any attempt for somebody, why does everybody want to love or be loved? Why? Why does everybody want to be happy? Have you met people who want to be unhappy? Have you met anybody who goes to a temple and says, my dear Lord, I am so happy for so long, I am very disturbed, why am I not unhappy? Have you met anybody who goes with that prayer? Or have you met anybody who goes to a lawyer or a policeman? See, everything is going so peacefully in my life, why don't you create some trouble in my life? Let there be some trouble. No. So why the desire is there to seek happiness? Why is the desire there to seek love? Why is the desire there to seek eternal life? Can you tell me? Why do you have such a desire and not have the opposite desire? Yes. Well, the answer is, you are seeking these things because you are these things. By nature you are happy. By nature you are full of love. By nature you are eternal. But because you do not know who is the you, who is the I, we have forgotten that we are the spiritual soul, eternal part and parcel of Krishna. We think that we are this temporary material body, and that is Maya, illusion. Under the influence of this Maya, we are imagining ourselves to be that which we are not. That is the meaning of Maya, Maya. So under the spell of this false conception, of this illusion, We think we are not happy. Just like in a dream, we think that we are being pursued by a tiger. Tiger is chasing and we are greatly upset and we are perspiring and we are shouting, save me. But actually it's a dream, a bad dream. So this whole material world for us is like a bad dream. We are falsely identifying with this body and creating so many problems for ourselves, unnecessarily. And in a dream we are making such a big thing about the dream. But ultimately it's a dream. When you are in the dream, it seems very realistic. But from the wakeful point of view, when you are awake, then you laugh it off. So, when we are self-realized or God-realized, in our
experience... Those are meditations of them. I am going to learn about it. Yes, I am going to learn about it. Now, in Mandira, there are some rules in the Mandira. In general, the principle is like this. कि जब मंदिर में जैसे ऑल्टर के अंदर घुसते हैं शास्त्र बताते कभी सीधा नहीं घुसना चाहिए ऐसा चल रहा है हमेशा ऐसा घुसना चाहिए कि सेवा के मास्टर के सामने सीधा तान के नहीं आएगा अपने अपने मास्टर अपने स्वामी के सामने ऐसे आएगा तो ऐसे प्रवेश करना चाहिए ऑल्टर के अंदर पर जब भोग चढ़ाने जा रहे हैं और पहले जहां भगवान की थाली रखते हैं उस आसन उस जगह को सफाई करते हैं पहले मट्टी न हो गंदगी न हो फिर एक ही मंदिर में आसन होते हैं तो एक प्लेट एक टेबल और भगवान के बैठने की कुर्सी यहाँ का पता नहीं व्यक्ति का स्टैंडर्ड क्योंकि ऐसा मैं कई मंदिरों में देखा है कि भगवान के बैठने के लिए कुर्सी होती है या सोफा जैसा होता है तो बड़ा बड़ा और बड़ी टेबल होती है तो पहले भगवान के लिए कुर्सी लगाते हैं टेबल लगाते हैं सब विघ्नों के सामने और सब रखने के बाद प्लेट लेके आते हैं प्लेट में सब भोग रखा हुआ है ढंग से सब कटोरी में रखा होता है सुंदर तरीके से एकदम वो एक करके प्लेट और ग्लास सजा कर देते हैं तो सब रेडी है तो कुछ मंत्र होते हैं ऐसे मुद्राएं होती हैं कुछ मुद्राएं होती हैं ऐसे करके मुद्रा होती है ऐसे करके एक मुद्रा होती है और कई सारी मुद्राएं होती हैं तो शंख मुद्रा कई सारे एक मुद्रा होती है इन्विटेशन की मुद्रा भगवान को इनवाइट करते हैं भगवान कहते आइए वो मैंने वेलकम ऐसा करके ये भावना से तो एक ऐसे करके मुद्रा होती है तो उसमें भगवान को विग्रह से ऐसे लेके सीट तक ले जाते हैं मतलब अभी भगवान आके बैठ गए ये हम हमारे मन में चलता है ऐसा द्वितीय वर्ष से माइंड में चलती है मन में चलती है ऐसे भगवान को बैठाते हैं अभी भगवान बैठ गए वहां पे ध्यान रखते हैं मन में कि झोलमर चक्कर बन के बैठे हैं फिजिकल कुछ नहीं हो रहा है सब मन में चलता है कि भगवान को ऊपर से ऐसे लिया पैर बंद नहीं होंगे रास्ते में पत्थर आ गया तो चप्पल पहनाते हुए लेके आते हैं फिर चप्पल उतार के भगवान बैठ जाएंगे प्रसाद लेने बैठे भोग लगा भगवान बैठे ऐसे करके सब विग्रहों के पास जाते हैं और भगवान को करते हैं भगवान आइए आपका भोग रेडी है उसके बाद उस भोग को प्यूरिफाई करते हैं उसके गंगा जल होता है और मंत्र होते हैं और मुद्राएं होती हैं तीन चार चीजें होती हैं ऐसी उसके द्वारा उस भोग को एकदम शुद्ध कर देते हैं भगवान को स्वीकार करते हैं क्योंकि हम लोग अपने हाथ से बनाया था कहीं गंदगी रुकी हुई होगी शुद्धिकरण के स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हुए रहेंगे तो मंत्रों के द्वारा मुद्राओं के द्वारा और उसमें पानी छिड़कते हैं जिसमें गंगा जल में छोटे पानी छिड़कते हैं उसमें मिला करके पानी ऐसा सभी छिड़का जाता है सब रेडी हो गया भगवान बैठ गए शुद्ध हो गया फिर कई सारे मंत्र हैं हरे करके मंत्र हैं तो मुद्रा है वो मुद्राएं करके और बहुत कुछ ऐसे कुछ छोटे छोटे नियम है लेकिन भगवान को सर ये सब चीजें खुश करती है भगवान को तो भगवान को भोग चढ़ाने से पहले उनको खुश करते हैं कि खुशी खुशी खाएं वो ऐसा नहीं आगे बैठा दिया रहा बैठा कर उनको खुशी का माहौल क्रिएट करते हैं वो चीज जैसे भगवान पसंद है भगवान को मुद्राएं बड़ी अच्छी लगती है कुछ मुद्राएं बताइए कि प्रसाद के टाइम कौन सी मुद्रा अच्छी लगती है प्रसाद लेने के बाद कौन सी मुद्रा अच्छी लगती है हमारी भक्ति विलास में वर्णन है उसका तो मुद्राएं करते हैं और फिर मंत्र बोलते हैं जो हम लोग भोग चढ़ाने के लिए बोलते हैं ना तमाम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय उसके से मंत्र भक्ति विदान स्वामी के नाम है नमस्ते सरस्वती देवी और वाणी विचार विशेष मंदिर वाणी पाठ शक्ति इस कारण है नमो महावंदन नमो भगवान देवाय भगवान कृष्णा तीन तीन बार गंडी भी जाते जाते इस भावना से भगवान कृपया भगवान को नहीं प्रार्थना करते हैं, गुरु को बोलते हैं। हम बहुत गुरु को चलाते हैं तो गुरु आगे परंपरा के द्वारा भगवान राधारानी और कृष्ण तक पहुंचते हैं। ऐसा सब करने के बाद घंटी बजाते बजाते सब मंत्र बोल के प्रार्थना करते हैं दो मिनट की एक एक सेकंड पहले की गुरु महाराज पता नहीं मैंने बहुत गलतियां की होंगी वो चढ़ाने में ढंग से ऑफर नहीं किया होगा ढंग से सब प्रार्थना नहीं बोली होगी भावना ठीक नहीं मेरी कृपया रिक्वेस्ट करते हैं कृपया स्वीकार कर लीजिए इन सब अशुद्धताओं के होते हुए भी इतना बोलकर हम बात करें। फिर डिपेंड करता है कोई कोई भी भाव में 25 मिनट का वेट करते हैं कोई भाव में 15 मिनट का वेट करते हैं। एक अंदाजा अंदाजा कि इतने सारा समय इतने सारा सामान खाने में कितना समय लगेगा भगवान को। जब प्लेट भी बनाते हैं भगवान के भोग की तो ऐसा बनाते हैं कि 16 प्रभु जी बोले 16 साल का नौजवान लड़का कितना खाएगा उसको सोचते हैं चार चपाती मैं कहीं घर में गया था इतनी सी कटोरी लगा देंगे लिटरली इतनी एक दो तीन चार तीन बजे थाली वैसे भगवान को सोचा उनको ऐसे ही बना था इतना समय का आपका पेट भरेगा क्या पेट कैसे भरेगा बोले आपको छोटा सा पेट नहीं भरेगा तो आप पूरे विश्व के पालन करता भगवान का पेट भरते चले उनको पता ही था कि अच्छी तरह खिलाना चाहिए भगवान को। तो साधारण कटोरी होने अच्छी क्वांटिटी में चपाती खिलाए तो चार पांच छह चपाती होनी चाहिए पूरी होने 7-8 पूरी होने और ये सोचते हुए खिलाना चाहिए कि 16 साल का मेरा प्रिय कुछ भी मित्र या कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आया है गेस्ट बन के क्या खिलाऊंगा कैसे खिलाऊंगा ईगरनेस सो ऐसे वो चलाते हैं भगवान को सब प्रार्थना करके चले जाते हैं 25 मिनट बाद दूसरी जगह वापस आते हैं वापस आ गए ऐसे कदम लगा दें भगवान न्याय कम है खटखटाते इसलिए भावना से भूलते नहीं ऐसा कि न्याय कम है लेकिन भावना होगी होंगे क्या ऐसा आते हैं तो फिर ऐसा बता दिया कुछ ऐसा इंडिकेशन देते भगवान को कि मैं खाने जा रहा हूँ प्लेट ऐसा ही भगवान खा रहे हैं भगवान से परमिशन लेते हैं कि भगवान आशा होगी आपने लिया होगा ऐसा भावना से रिटी वर्ष सब माइंड का खेल है रिटी वर्ष में फिजिकल चीजें बहुत कम होती है माइंड में बहुत कुछ चलता है इसलिए अब्सॉर्प्शन आता है तो माइंड फोकस होता है माइंड की चिंता तक करना तो चाहे वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान आशा होगी आपने खाया होगा तभी आप आके देते मैं लेके जाऊँ ऐसा करते हुए घंटी में जाकर एक प्लेट मांग ले जाते हैं किसी प्लेट मांग ले जाते हैं किसी प्लेट मांग ले जाते हैं फिर आई एम सॉरी प्लेट मांगने से पहले हाँ प्लेट मांग ले जाते हैं सॉरी सबसे पहले उनको कुल्ला कराते हैं हो गया होगा कि कुल्ला कराते हैं फिर मुख शुद्धि मुख शुद्धि में जैसे सौंफ सुपारी खाते हैं हम लोग अच्छा उनके लिए मुख शुद्धि होती है तो मुख शुद्धि कुछ भी ऐसा नहीं भगवान खाओ मुंह में डालते भगवान के ऐसा नहीं दूर से ऐसा करके डाल देते हैं दो कंटेनर होते हैं एक में वो होता है आइटम लिक्विड को लेकर ऐसे इशारा करते हैं भगवान की ओर कि भगवान खिला रहे हैं मुख शुद्धि खिला रहे हैं बुल्ला करा रहे हैं भगवान को हाथ पैर धुला रहे हैं भगवान के तो अलग अलग आइटम होते हैं हाथ पैर धुलाने के लिए एक कुल्ला कराने के लिए पहले मुख शुद्धि ऐसा करके सर हो गया भगवान को खिला दें सर हो गया भगवान खा लिए लिक्विड एकदम करके सब खाली दे जाते हैं और भगवान को फिर से कभी कभी मतलब भूल जाते हैं ऐसा उठा लेते हैं आशा भगवान बैठे तो है नहीं वहां पे दिख तो नहीं रहा कुछ नहीं उठा कर जाए भगवान उठा उठा चलेगा फिर ठीक भूल जाते हैं कभी मतलब इतने कॉन्शियस नहीं होते कि भगवान बैठे हैं कभी क्या करते क्या क्या एकदम ध्यान रखना चाहिए साक्षात भगवान बैठे हैं उनको खिला रहे हैं वो कभी कुल्ला करा लिया क्या क्या भगवान को चाहिए होगा कुल्ला कराया फिर थोड़ा प्याज धुलाया हाथ पैर धुलाए फिर हम छुट्टी करा लिए हो गया भगवान ने खा लिया फिर उठा के ले गए मन में रहना चाहिए भगवान बैठे अभी जितना ज्यादा मैं चिंतन करेंगे उतना ज्यादा हमारा मन शुद्धि शुद्ध होएगा फोकस होएगा उतना ही प्रगति करेंगे हम दिल्ली वर्ष से अगर भगवान को तो बैठा कर आश्रम को ले जाते हैं टेबल पर ले जाते हैं सफाई कर देते हैं हमें बहुत दर्शन मिल जाता है इतना सब कुछ होता है दर्शन से पहले ये सब चीज़ें 15 मिनट में होती हैं 15 मिनट बीच में तो भोग लगता है लेकिन भोग लगने से पहले 5 मिनट के अंदर ये सब करना होता है और फिर 5 मिनट के अंदर उठाना माइंड अप। टाइम बहुत कम होता है, सब तेजी से भी करना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस जब हो जाती है तो तेजी से करते करते भी उसे भावना ठीक होती है। तो ये भोग एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो भोग का ऐसी आरती, ऐसी ड्रेसिंग तो बहुत ही वेरी स्पेशल थी। भगवान का निर्वस्त्र करते हैं पहले, यहाँ पे पता नहीं कैसे मैंने कभी ड्रेसिंग की थी, उन्होंने बॉर्डर थे कॉपर में आ जाते थे बॉर्डर तक, एकदम बढ़िया बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं करा उनके भगवान। तो बहुत सुंदर थे भगवान, नहलाते हैं, नहलाते मतलब फिजिकल नहीं नहलाते, मन में नहलाते हैं उनको, ठंडी वाली गर्म पानी से नहलाते हैं, शुक्र के गर्म पानी गर्म में, और भगवान को नहलाया जाता है फिजिकली नहीं, छोटे भगवान को ऐसे इन्वाइट करते हैं, हमें नहलाया तो लेके ऐसे नहलाते हैं, नहलाते हैं मंत्र बोलते हैं, नहलाते हैं भगवान को मंत्र सुनने अच्छे लगते हैं, कुछ चिंता मणि रखा रसाद मैं हरिभक्ति बस बोला ही वाला मंत्र बोल रहा है, नहलाते हैं 3-4 मंत्र हैं वो नहलाते हैं, बोलते हैं नहलाने वाला तुरंत ठंडी लग जाएगी भगवान को, तुरंत से उठा के उनको उनको कपड़े लेके उसको जो टावल होता है फिर भगवान को पहुँच जाए। फिजिकली छोटे वाले भी लोगों को नहलाते हैं एक्चुअली रोज, उसी का चरणों में सब लोग पीते ना रोज, वो यही बता रहे हैं भगवान को नहलाते हैं एक कंटेनर में, उसको नहलाया जाता है भगवान को, उसमें अच्छा खुशबू वाला पानी होता है, वो पानी में खुशबू डाली जाती है, भगवान को नहलाया जाता है सुंदर तरीके से, पहुँचते हैं भगवान के बारे को, फिर भी ड्रेसिंग चल रहा है, छोटे विग्रह के साथ ऐसा होता है, बड़े विग्रह के साथ सीधे ड्रेसिंग चल हो जाती है, उनको निर्वस्त्र करके उनको नहीं छोटे बड़े विग्रह के साथ भी मन में नहलाया जाता है, छोटे वालों के साथ फिजिकली नहलाया जाता है उनको, बड़े विग्रहों को मन में नहलाया जाता है, बड़े विग्रह कैसे इन्वाइट करते हैं, अभी कुछ है नहीं वहाँ पे आसन में आपके, लेकिन भगवान उन्हें इन्वाइट किया नहलाते हैं वो वापस ले जाते हैं, फिजिकली एकदम बढ़िया टावर होता है, फिर भगवान का बढ़िया बहुत मजा आता है सर, मजे मतलब मजे नहीं आने चाहिए, पॉइंट है कि बहुत ऐसा लगता है कि भगवान के हम शरीर को हम हाथ लगा रहे हैं सर, पहुँच रहे भगवान को, ध्यान से सब जगह पहुँचना चाहिए, जैसे हम लोग नहाने के बाद यहाँ भी हाथ लगाते हैं पीछे ढंग से बाहर पीछे ढंग से भगवान को पहुँचते हैं, पूरा तरीके करके भगवान को बात कराना चालू करते हैं ध्यान से, हमारे इसे ड्यूटी मशीन में कभी नखून पड़े नहीं करते, भगवान को विग्रह की सेवा करते करते नखून लग जाए भगवान के यहाँ पर ऐसा ध्यान से कम छोटे नखून रहना चाहिए, उनके वस्त्र पहनाते हैं उनको अच्छे से बहुत सुंदर लगाते हैं, कोटी लगा लगाते हैं, कान में पहनाते हैं, हाथ में टर्बन पहनाते हैं, बढ़िया से टर्बन में बहुत टाइम लगता है, टर्बन बीच लगाते हैं और क्या पगड़ी रेडीमेड नहीं होती, फॉर मी आई शुड टेक 50% टाइम ड्रेसिंग द होल थिंग होल डिटेल्स, 50% टाइम फॉर पगड़ी प्रैक्टिकली, और एकदम बहुत सिंपल कपड़ा होता है व्हाइट है ऐसा इतना बड़ा होता है, एक फोल्ड दो फोल्ड तीन फोल्ड करके ऐसा कर देते हैं, फिर ऐसा करते हैं पीछे देखो ऐसे ऐसे क्रॉस अलग अलग स्टाइल होते हैं, हर जाने का अपना स्टाइल होता है, यहाँ क्रॉस लेते हैं, यहाँ क्रॉस लेते हैं, यहाँ क्रॉस लेके एक और कपड़ा के तीन कपड़े लगाते हैं, एक फेटा बनाते हैं, कभी कभी ऐसा फेटा होता है रेड ब्लू ग्रीन कलर का, वो बहुत मतलब हमेशा फेटा बनाने का, फेटे में भी अलग तरीके होते हैं, ऐसे करके ऐसा फेटा लगाना, ऐसे करके यही फेटा गोल कर देना, उसमें भी से ऐसे करके निकाल देना, कुछ बहुत आर्टिस्टिक हैं बहुत, हम लोग को इतना प्रैक्टिस हो गया था पुणे में, हम लोग थे तो पगड़ी देखकर बताते थे ड्रेसिंग कैसे किया है, सब पुजारी हर किसी को बताता था आज ये बचने ड्रेसिंग किया, सबका एक स्टैंडर्ड होता है पगड़ी बनाने का तरीका, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो भक्त को उसी प्रकार के देखने में पगड़ी जैसी दिखती है उसकी, जैसी ड्रेसिंग हुई ये पुजारी था ये पुजारी पुजारियों के मन में लगाई हुई ऐसी भावना आती है, लेकिन बहुत मधुर क्रिया है, बहुत अच्छा भान निकल 2-3 घंटे चले गए पता नहीं चल रहा है, भगवान की सेवा में जैसे सुबह किया जैसे शाम को किया, हर एक स्थान भर हो 1.5 घंटा दर्शन करने वाले निकलते हैं भाव जब करने को सकते हैं, खासकर शुरुआत में जब आदत बहुत थकान होती है, बहुत एनर्जी जाती है, खड़े खड़े करना है, बैठ घुटनों पर टेक के, बहुत बड़े होते हैं काफी, उनके सामने घुटनों पर टेके रहेंगे करना होता तो बहुत एनर्जी शरीर की थकान हो जाती है साथ। बस वेरी ब्यूटी माइंड एक्टिविटी एब्सॉर्ब माइंड एकदम दूर सेवा के अच्छे से अच्छा कपड़े पहने हैं, खासकर टर्बन में तो बहुत कॉम्बिनेशन देखते हैं कलर बैकड्रॉप क्या क्या कॉम्बिनेशन है, कल ड्रेस में क्या कलर है, ड्रेस पे ये आते कौन नहीं जाएगा, ये फ्लैप भी है इसका क्या कलर है, तो कौन सा कलर मैच करेगा कबड्डी, कौन से तीन कलर या दो कलर की कबड्डी लगाए जिससे मैच करेंगे टर्बन भी, यहाँ पे टर्बन भी स्टैंडर्ड है, ये कलर कबड्डी के लिए ड्रेस के साथ ये टर्बन भी है, वहाँ पे तो इतने नहीं बनते हैं थोड़े ही होते हैं, उसी को यहाँ वहाँ लगाते हैं अपने अपने दिमाग से जो करना है, वेरी स्पेशल वेरी अब्सॉर्बिंग सर्विस, तो इसलिए माइंड जो है मन है कंट्रोल में आता है, इतना मन एकाग्र रहता है उन विग्रहों पर, तो ये ब्रह्मचारी को सीखना चाहिए पॉइंट है कि ब्रह्मचारी को और सुविधा की आराधना करना नियमों के अनुसार समय समय पर ध्यान रिस्पेक्ट से हथौड़ी उदाहरण बताते हैं, एक बार एक भक्त थे वो राधा कृष्ण का विग्रह की पूजा करने के लिए उनको उठा रहे थे, उनके आगे गिर गया भगवान, भगवान गिर गया सर, बोले ए ए कृष्ण किधर भागता है, किधर भागता है, तो ये नहीं होना चाहिए सर, गिर गया तो किधर भागता है, दारू सुन के भाग रहा है मतलब, जैसे जैसे हम इतने राग भाव में है कि भगवान हमारे हंसते भाग रहे हैं, चीख ही ले लेते हैं ऐसा नहीं, भगवान से थोड़ा भी लादर ठकुर लेके गए तो अपराध होता है, अश्विधा की सेवा में ध्यान से नहीं गए तुरंत सेवा अपराध होता है, इसलिए बाहर निकलने के बाद शास्त्र में कुछ मंत्र बताए गए हैं, वो मंत्र बजाने बोलते हैं पीटी वोशिप करने के बाद या टसिंग करने के बाद, उनमें लिखा है कि जाने अनजाने में उनसे कोई गलती होगी तो उसके लिए माफ करिए, ऐसे करके शास्त्रों को श्लोक है वो सब मंत्र पढ़ते हैं, जैसे कि जो भी बहुत गलती हो गई जाने में सेवा प्राप्त होगा तो प्रगति का सकते, एक तरह से अपराध का भी खतरा है लेकिन शुद्धिकरण भी बहुत होता है, मन भी बहुत शुद्ध होता है, बहुत एकाग्रित हो जाता है, मन की चिंतनता बहुत हद तक कम कम होती है धीरे धीरे, लोगों की सेवा करते हैं आगे जाके जब भी आप लोग स्टैंडर्ड पर पहुंचेंगे ब्राह्मण दीक्षित हो जाएंगे आप लोग भी करेंगे, नींबू क्या करते हैं वो ऐसा नहीं नींबू लगाते हैं वो मिलाते हैं नींबू जैसे चंदन का कभी कभी तो कोई कोई दिन चंदन से भगवान को नहलाते हैं कोई कोई दिन में, हाँ गोपी चंदन तो गोपी चंदन उसमें नींबू मिला के उसके पेस्ट बना के भगवान को मसाज करते हैं और फिर पानी से नहलाते हैं, साबुन ये साबुन की जगह ये ऑइंटमेंट है और कभी कभी दही से दही और बेसन का ऐसा दलीप लगा के उससे लगा से लगा अलग अलग दिन अलग अलग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जनरली मंदिरों में गोपी चंदन और नींबू से करते हैं, जनरली मंदिरों में एकादशी में नहीं करते हैं वो, एकादशी में दही से करते हैं, कई मंदिरों में ड्रेस के कलर भी स्टैंडर्ड होते हैं मतलब इस दिन पे ये कलर इस दिन पे ये कलर, शासन में वर्णन है कई लोगों का, एनीवे ये ब्रह्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी आगे जाकर सब कुछ सीखिएगा, ये कभी भी सेवाओं में इतने व्यस्त रहते हैं टाइम नहीं होता सेवा करने के लिए, ऐसा नहीं हो समय में तो जरूर जाना चाहिए, मैं भी अभिषेक में मौका मिलता तो पहुंच जाता हूँ फेस्टिवल से, दर्शन का मौका नहीं मिलता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन धागा भी आ गया कोई भी सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन इट्स वेरी स्पेशल, जिस दिन हम लोग दर्शन करके आते थे उसमें अपने एक्सपीरियंस से बुला देते हैं, लोग शेयर करते थे स्पेशल एक्सपीरियंस, नॉट इन अ सर्जिक वे बट इन समथिंग दैट यू फील वेरी नाइस, वेरी one of an exchange of heart with the Lord and the Sabbath of Jesus. Exchange of love, exchange of feelings. We are the same. कोई बहुत चढ़ा रहे हैं चाहे आरती कर रहे हैं चाहे टेस्टिंग कर रहे हैं कोई भी सेवा बहुत विशेष प्रकार का आदरण प्रदान होता है बड़ा पर्सनल अभी हम भगवान की पर्सनल सेवन है भगवान की सेवा कर रहे हैं नहला रहे हैं क्या सौभाग्य है राधा शांति मिल को नहलाना गौर ने चाहे नहला रहे हैं भगवान स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी उनको नहला रहे हैं हम नहला रहे हैं कौन है हम कौन भगवान जैसे ही हम फूल लेकर भगवान के चरण में डालते हैं वो हर देवता भगवान के कहते हैं ठप करके भगवान भाई किसने बोला भगवान कहते नहीं वहां छोड़कर यहां आना पड़ेगा स्वीकार करने के लिए वही बैठे बैठे स्वीकार करते हैं एक्चुअली भगवान स्वीकार कर रहे हैं As good as we are in Golok Vrindavan serving the Lord. Like you see, Chasuru Kriti, in a way. Very special. Very privileged service. Haragi mein baske bhakte the kare kare. Pula ya rupu ya rupu interesting karne ke liye nahi aao na please. Yeah,
rupu
ja rupu ja na kwaas. Kwaas mein. Aisa kaam ho gaya sir. Iski seva ho jaati thi kare kare time nahi jab karne ke liye 2 hours 2 hours mein dressing karenge. Jab ke time dressing hoti na. और बहुत बाकी दिन सारा इतना टाइट है तो जाइए प्रभु जी को चलो ना चलो ना चलो यार दिन बहुत बिजी है जहाँ जाना है वहाँ जाना है प्रभु जी आधी करके आ जाओ पगड़ी में बना दूंगा ऐसे बार्गेनिंग होती थी सो अनफॉर्चुनेट जब मैं मेरे को याद है जब पुणे में हम लोग थे तो केवल दो पुजारी थे तीन और दो विग्रह चार विग्रह दो पुजारी चार विग्रह की सेवा करते थे और उसमें एक बीमार हो गया वो अकेला व्यक्ति को चारों की सेवा करना पड़ता था तो बड़ा इश्यू बन गया था तो फिर मेरे को और एक तो भक्तों उनको सेंट्रल जीबीसी से बोला गया जीबीसी सेंट्रल प्रेसिडेंट से बोला गया कि इनको तुरंत ब्राह्मण दीक्षा दिला दी जाए तो हमारी इमरजेंसी में ब्राह्मण दीक्षा हो गई थी हम रेगुलर दीक्षा के साथ नहीं होती हमारी इमरजेंसी 5 मिनट बुलाया और गायत्री गायत्री थक दे दी हमको कि पूजा की सेवा करने के लिए वापस तुरंत वापस जब गए गायत्री के बाद तो 1000 होता और समय चलो अभी अभी ब्राह्मण हमको कॉन्शियस भी नहीं हुआ कि ब्राह्मण ठंड मिल गया भाई तो दोनों भी लेट हो रहा है आरती करनी है चलेगा सीधा गेट से चलेगा इमरजेंसी आ गई थी तो इस मन में ऐसा होता है कोई ध्यान नहीं करने का तो चलो लेकिन माने बहुत कुछ सीखने को मिला उन दिनों में तो बहुत कम बुझाई थे तो खूब सेवा मिलती थी बहुत सेवा बहुत टाइम हम लोग ने खूब आरती आना खूब बहुत सारा खूब ड्रेसिंग करने वेरी पीसफुल एक्टिविटी इसके बाद एकदम ऐसा लगता है दुनिया सब शांत हो गई हम शांत दुनिया भी शांत हम चिंतित होते तो सब चिंतित दिखता है हमें वेरी वेरी स्पेशल एक्टिविटी सुधाकर आगे भी चर्चा करेंगे आज प्रार्थना में समझ नहीं है शुरू आई वाज थिंकिंग बिकॉज यू आर लिविंग टुमारो तो जा रहे हैं तो खत्म कर देते सारे पॉइंट्स आठ हो नहीं सकता खत्म क्योंकि 9वां 10वां पॉइंट जो है 9वें पॉइंट में कम से कम 3 से 4 क्लास लगेंगे 5 भी लग सकते हैं और 10वें पॉइंट में कम से कम 4-5 क्लास लगेंगे 9th और 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो 10-12 क्लास तो 2 पॉइंट में लग जाएंगे
मैं देखा नहीं वो भी देखा 9th और 10th पॉइंट क्या है 9 पॉइंट लगे स्त्री होते कैसे संभव संभव चालू करना चाहिए 10वां पॉइंट है आपस में भक्तों का कैसे संबंध होना चाहिए इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कल कब ट्रेन आप लोग की अभी जा रहे
हैं
साढ़े 11
12 बजे सरस्वती शून्यवादी पाश्चात्य देश आरिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोहरकेशे नमः हे कृष्ण कमलास सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकारकं ृंदावेश्वरी विवशानुसृते देवी प्रणमामि हरिः
चर्चा हो चुके हैं पहला है साधना की महत्वता जानना सेवक बनना सेवा की भावना में सेवाएं करना खासकर वैष्णव की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना तीसरा हमने चर्चा किया था कि कैसे अपने परंपरा के प्रति ब्रह्मचर्य को हमेशा श्रेष्ठ और लॉयल रहना चाहिए और चौथा जिसमें हमने बहुत समय लगाया वो है ध्यान पूर्वक गोपाल जी की पुस्तकों को पढ़ना और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें समझने का प्रयास करना पांचवा है ब्रह्मचारी शुड बी ट्रेन्ड टू फियरलेसली प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलॉसफी टू पीपल इन जनरल एंड डिफेंड द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर भक्ति शुड बी ट्रेन्ड टू फियरलेसली प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलॉसफी टू द पीपल इन जनरल साधारण लोगों को जन साधारण को अभय रूप में कृष्ण भक्ति का फिलॉसफी जो है उसको प्रचार करना और भक्ति के तत्वों को सुरक्षित रखना सुरक्षा करना टू डिफेंड द प्रिंसिपल ऑफ योर भक्ति तो दो पॉइंट आता है इसमें पहला है कि अभयता से प्रचार करना ये बहुत एक्चुअली बहुत लंबा टॉपिक है प्रचार का कुछ साल पहले मैंने इस पे हमने चर्चा की थी इस पे छह घंटे प्रचार मतलब क्या होता है तो प्रभुपाद जी बोलते थे प्रचार मतलब हृदय का परिवर्तन प्रचार मतलब केवल किसी ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक देना उसको प्रचार नहीं बोलते लेकिन प्रचार किया तब समझाया जाता है प्रचार किया कि जब प्रचार जिसको किया गया है उसके हृदय में परिवर्तन आया तो किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में अगर हमें परिवर्तन लाना है उसके लिए सबसे पहले हमारे हृदय में परिवर्तन आना चाहिए हमारा खुद का हृदय ही परिवर्तित नहीं है तो दूसरे का हृदय क्या परिवर्तित कर सकते हैं इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जो भागवत कथा करने वाले जो सप्ताह करने वाले लोग हैं उनको खंडन करते हैं क्योंकि ये लोग खुद ही इनका हृदय प्रभावित नहीं है भक्तिमय नहीं है भौतिकता के प्रति आसक्ति अनासक्ति नहीं आई, भगवान के प्रति आसक्ति नहीं आई, केवल पैसा कमाने के लिए कुछ प्रवचन देते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रवचन को प्रचार नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों का हृदय परिवर्तित नहीं होता उसको सुनने से। कुछ समय के लिए अच्छा सा लगता है उनको कुछ कथा सुन के आए, लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं आता, उनके दिनचर्या में परिवर्तन नहीं आता, वही बुरी आते चलती रहती हैं, वही पुराने उल्टे सीधे काम चलते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में। लेकिन जब अभी हमारा जीवन देखिए कैसा परिवर्तित हो गया, पहले हमको सोचा था हमने कभी ऐसा तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के शेव करके शिखा रख के कीर्तन में नाचेंगे। आज से 5 साल पहले जब हम तो किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे या कहीं कॉलेज में पढ़ रहे थे, सोचा भी था ऐसा हम कभी करेंगे आगे जाकर। यह है परिवर्तन, पूरा जीवन परिवर्तन। परिवर्तन जरूरी नहीं मतलब भारी परिवर्तन होना, हृदय का परिवर्तन होना, या संक्षिप्त में आर एस्पिरेशंस एंड गोल्स चेंज। किन चीजों के पीछे हम भागते थे पहले, किन चीजों की आकांक्षा करते थे पहले, पैसा, मान सम्मान, सुंदर पत्नी, ये पत्नी नहीं सोचते तो शास्त्री इसके बारे में सोचते होंगे, सुंदर स्त्री मिलनी चाहिए हमें, और घूमने फिरने में, खाने पीने के बारे में, ये सब चीजों के बारे में ये हमारी आकांक्षाएं हुआ करती थी। हम विदेश जाएंगे या इस कंपनी में नौकरी करेंगे या ये बनेंगे, बच्चों को सिखाया जाता है तुम बड़े होकर क्या बनोगे, डॉक्टर बनूंगा, शाबाश, ऐसा सिखाया जाता है बच्चों को। तो उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या वो जीवन में आगे जाके करना चाहते हैं, क्या उनके जीवन के लक्ष्य है, उसमें परिवर्तन आना चाहिए। आज एक भक्त से पूछा आपका क्या आकांक्षा है, दासानु दास बनना चाहता हूं। बाकी लोग सोचेंगे पागल हो गया है, सर्वेंट बनना चाहता है, सेवक बनना चाहता है, नौकर बनना चाहता है। तो हमारे पूरे पूरे हमारे आकांक्षाओं पे 180 डिग्री चेंज आ गया, मतलब एकदम ऐसे थे और ऐसे हो गए। कहां बॉस बनने का प्रयास कर रहे थे, कहां सेवक बनने का प्रयास कर रहे थे। ये प्रचार है। तो प्रचार मतलब कि कभी कभी इसको बहुत सस्ता नहीं समझना चाहिए, वो कहीं जाके हमने प्रवचन दिया, आगे हमने प्रचार करके आ गए, मुझे प्रवचन दिया आपने, प्रचार नहीं किया, प्रचार उतने हद तक किया जितने हद तक उस सुनने वालों के हृदय में परिवर्तन आया। प्रीचिंग मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, ऊपर बोलते थे, नॉट जस्ट सम इम्प्रेसिंग सम पीपल विद द कुछ श्लोक हमने बोल दिए 2-4-5 जो लोग बड़ा क्या बड़ा क्या व्यक्ति है, बस इतना प्रभाव पड़ा उनको, फिर आगे जाके बाकी जाके उनके गोल्स, उनके एस्पिरेशंस, उनके जीवन के जो लक्ष्य थे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी भी वो बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अभी भी वो सुंदर गायक बनना चाहते हैं, अभी भी वो जो उनके पुराने लक्ष्य थे जीवन के, वो अभी भी वैसे ही है, मतलब हृदय में परिवर्तन नहीं आया, मतलब प्रचार नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए प्रचार मतलब होता क्या है। ये है प्रचार, किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन लाना, मतलब उसके गोल्स, उसके एस्पिरेशन में परिवर्तन लाना। यू कैन नो अ पर्सन बाय हिज एस्पिरेशंस, बाय हिज गोल्स, कैसा व्यक्ति है उसका क्या, मतलब क्या वो जीवन में लक्ष्य रखता है, किस प्रकार के उसके आकांक्षाएं हैं, उससे हम समझ सकते हैं वो व्यक्ति कैसा है। तो ब्रह्मचारी जो है उसके लिए प्रचार करना या प्रचार सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। खास कर इसको थोड़ा समझना चाहिए ध्यान से। अभी गृहस्थ है वो पैसा कमाता है, पत्नी है, बच्चे हैं, बुढ़ापे में अगर पत्नी नहीं भी रही तो बच्चे देखभाल करेंगे आपकी, और पैसा भी है तो खाना पीना भी चलता रहेगा। लेकिन ब्रह्मचारी जीवन में, सन्यासी जीवन में, ना तो घर परिवार है आपके पास, ना पैसा है, तो बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा। कभी कभी कई लोग इसे डर जाते हैं इसलिए ब्रह्मचारी नहीं बनते, तो बुढ़ापे में देखभाल कौन करेगा। अभी शरीर में शक्ति है, कपड़ा धो सकते हैं अपने, प्रसाद लेने जा सकते हैं, सब कर सकते हैं, बुढ़ापे में सब क्या कौन करेगा। इसलिए नहीं हम प्रचार करते हैं, लेकिन अगर हम क्योंकि अभी सब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई कुकिंग करते हैं, कोई डीटी वर्शिप करते हैं, ये सब चीजें आप बुढ़ापे में नहीं कर सकेंगे। बुढ़ापे में बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे आप, टेम्पल क्लीनिंग, आश्रम क्लीनिंग, गौशाला सेवा, ये सब नहीं कर पाएंगे बुढ़ापे में। उस समय में भक्ति में हमें टिके रहना है, तो मैं इस फिलॉसफी में आकर्षित, इस फिलॉसफी को पढ़ने में, समझने में, प्रचार करने में आनंद आना चाहिए। उस समय केवल ये कर पाएंगे, बस प्रभुपाद जी पुस्तकों को पढ़ना और उस पर ज्ञान बांटना, उतना ही कर पाएंगे बुढ़ापे में, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमने सीखा नहीं कि कैसे प्रचार करना चाहिए, प्रचार करने का मतलब नहीं जरूरी कि 500 लोग को बैठ के प्रवचन देना, वो हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति से मिले आप सड़क पे चलते हुए या बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बाजू वाला व्यक्ति बैठा है, उसको कृष्ण भक्ति के बारे में बताना, हरि नाम के बारे में बताना, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताना, कैसे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, इंद्र तृप्ति नहीं, आप शरीर नहीं आत्मा है, ये सब बेसिक बेसिक पॉइंट्स बताना आना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार हमें कृष्ण तत्व को बताना आना चाहिए। तो बुढ़ापे में हम इस प्रकार से प्रचार करने में रुचि ले सकते हैं। और यहां पे खास कर जोर दिया गया है कि ब्रह्मचारी को अभयता से प्रचार करना चाहिए। क्यों ये बात बोली गई है? क्योंकि प्रचार करने में, जैसे प्रचार करने जाएंगे, प्रचार करना मतलब माया पे आक्रमण करना। माया है, सबको अच्छी तरह अपने चुंगल में बांध के रखी हुई है, अपनी गोद में सुला रही है, सबको इंद्र तृप्ति करने में मदद कर रही है, और आप उठा रहे उठो। इंद्र तृप्ति करना जीव का स्वरूप नहीं है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, तुम कृष्ण नित्यदास, कृष्ण की सेवा करो, छोड़ो माया को। माया तुरंत, अच्छा मेरे लोगों को मेरे से बाहर निकालते हो तुम, देख लो परेशानी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन। तो जैसे ही प्रचार करने जाएंगे, जो जितना जोरदार प्रचारक होगा उतनी ज्यादा जोरदार उसको तकलीफ आएगी, ऑब्स्टिकल आएगा, एक प्रकार का रुकावट आएगी उसके प्रचार में। ये एक अच्छे प्रचारक का लक्षण है, आएगी रुकावट। हमेशा पापा जी ने जब जीव मंदिर बनाया, कितनी रुकावट है आई, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं करने का प्रयास किया। गिरिराज महाराज जी वहां रहते थे जीव मंदिर में, तो जैसे हरिदास ठाकुर के लिए वैश्या भेजी थी, वैसे गिरिराज महाराज को पतन करने के लिए वैश्या भेजा था एक व्यक्ति ने रात को। क्या क्या नहीं किया था ब्रह्मचारी के साथ, अचानक दिन ऑर्डर भेजे कि तोड़ दो जीव मंदिर, जितना बनाया कंस्ट्रक्शन को सबको तोड़ दो, सब बुलडोजर लेके आ गए थे लोग, मतलब उन्हें कैसा ना कैसा बचाया, कितनी तकलीफ है। तो ये भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, भौतिक जगत में खासकर कलयुग में हम लोग रह रहे हैं जो कलह का युग है, इसमें झगड़े होंगे, झगड़ा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन साथ में रहना बिना झगड़ा किए ये चैलेंज है। तो हमारे भक्तों के बीच में कितना हम कोऑपरेशन से रहते हैं, आपसी सम्मिलन मतलब समभाव से रहते हैं और झगड़े नहीं करते। झगड़ा करना मतलब कली ने प्रवेश किया, जैसे दो घोड़ों में झगड़ा, दो भक्तों में झगड़ा हुआ मतलब कली आ गया। सावधान साधु सावधान, तुरंत सावधान में जाना चाहिए, कली आ गया है, कली का प्रवेश हो गया। तो कुछ भी हम अच्छा करने जाएंगे इस जगत में, क्योंकि ज्यादातर लोग बुरे हैं कलयुग में, वो हमेशा रहेंगे और बुरे लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी, इसलिए जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हमारे प्रचार में तकलीफ ज्यादा आती रहेगी, इसलिए अर्जेंसी है प्रचार करने की। जितना अपडेट चालू करेंगे प्रचार, उतना ज्यादा आपको तकलीफ सहन करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग बढ़ते जा रहे हैं, ईर्ष्यालु लोग बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन जन्म ले रहे हैं ऐसे ईर्ष्यालु लोग, भक्त कम जन्म ले रहे हैं, ईर्ष्यालु लोग बहुत जन्म ले रहे हैं।
तो भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, हमें खूब प्रचार करना चाहिए जिससे भक्तों की संख्या भी बढ़ती रहे। और कलयुग में ये इस समय पैसा होएगा, ये जब 4,500 साल बचे हैं इसमें भक्तों की संख्या बढ़ेगी, खूब बढ़ेगी। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए किसी न किसी को तो परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा अपने जीवन को, अभयता से प्रचार करना पड़ेगा। जब भी प्रचार होगा तकलीफ आएगी। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कितना कितना तकलीफ उठाई जिसके कारण आज हम सब यहाँ आराम से बैठे। वृंदावन टेम्पल कैसे बना, दिल्ली टेम्पल कैसे बना, ये मैं थोड़ा आपको बताया था तेजस्वी के बारे में, कैसे उन्होंने परिश्रम करके दिल्ली टेम्पल बनाया, जुहू टेम्पल, इतने कई कई एक एक टेम्पल बनने में, मंदिर बनने में, आश्रम बनने में इतना परिश्रम भक्तों का लगा है। इतनी कई बार अपने जान को जोखिम में डालते हुए भक्तों ने प्रचार किया है। ऐसे ऐसे कंट्रीज में जाते हैं भक्तों प्रचार करने, जहाँ धोती कुर्ता पहनना अलाउड भी नहीं, तिलक पहने देख लेंगे तो तुरंत आपको उड़ा दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। तो लोग छुप के जाते हैं पैंट शर्ट पहन के, बाल ऊपर नकली बाल लगा के, तिलक हटा के, घंटी माला निकाल के या लंबा करके एकदम पैंट शर्ट पहन के कर्मी व्यक्ति बन के जाते हैं स्मगल करके पुस्तकों को। भक्ति महाराज के बारे में बता रहे थे भक्त लोग, भक्ति तीन महाराज जाते थे ऐसा चुपके से, ऐसी जगह पर जाते थे जहां पर एक भी व्यक्ति काला नहीं था, सब कोरे चमड़ी वाले थे, वो अकेले काले थे, फिर भी वो जाते थे पैंट शर्ट पहन के, लंबा ओवरकोट पहन के और किताबों को चुपके से ले जाते थे, कॉलेजों में जाते थे और स्मगल की हुई किताबों को प्रोफेसर को इंस्पायर करते थे कि आप खरीदिए इसको। अगर वो किताब किसी को बता दिया, वो प्रोफेसर ने बता दिया गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को कि ऐसा ऐसा ये व्यक्ति आया कहीं से, किसी जगह का जासूस है और भगवान के बारे में किताबें बांट रहा है, तुरंत वो जेल हो जाती, मार भी सकते थे जान से, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, कहे प्रचार करने। ऐसी ऐसी जगहों पर भी अब तो कहां नहीं जाते प्रचार करने। पाकिस्तान में कई जगहों पर तो शूट एट साइट ऐसा था कि जहां देखे भक्त को तो मार दिया जाए तुरंत, शूट एट साइट, देखते ही गोली छोड़ा दो, पूछना नहीं, बात नहीं करना, सीधा ठंग फिर उड़ा दो। ऐसी जगह पर भक्त जाते थे प्रचार करने, दिख गए किसी को, पुलिस वाले को, किसी ऑफिशियल व्यक्ति को, खत्म। सोचिए हमको थोड़ी तकलीफ होती है, हम अरे अभी सेवा नहीं करेंगे, सिर दर्द हो गया आज, थोड़ी तकलीफ हमें सेवा रुक जाती है। ये लोग जीवन अभी पता नहीं अगले क्षण किसने देखा तो जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी पता नहीं है, तो भी प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने के लिए ये स्पिरिट होना जरूरी है। जैसा भगत सिंह जैसे लोग जब देश को आजादी दिलाने के लिए 1942 से पहले जब मिल 19 उस टाइम 1940s में 47 में इंडिपेंडेंस, तो उससे पहले के सालों में जब ये लोग जीते थे, भारतीय लोग जब ब्रिटिश लोग शासन करते थे इंडिया पे, गुफाओं में मिलते थे, अंडरग्राउंड मिलते थे, सब साथ में आते थे, प्लान बनाते थे कैसे इन विदेशियों को भारत से निकालना है, ये प्लानिंग होती थी, कहाँ पे बॉम्ब डालेंगे, कैसे इनको उड़ा देंगे, इनके अंदर ऐसी खून, इनका ऐसा कान खून दौड़ता था, भारत को आजादी दिलाकर रहना है, उसके लिए कितने लोगों ने अपना जीवन दिया। उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार हमें ये बहुत ही लोगों को माया से आजादी दिलानी है। इस प्रकार से भारत पे विदेशियों का शासन था, इस बहुत ही जगत में माया का शासन है, और हम लोग यहाँ प्लानिंग चल रही है हम लोग की, कैसे माया उसके से लोगों को बचाना है, उसको जान भी देना पड़ेगा तो हम देंगे। जैसे वो भारतीय लोग थे, भारत सरकार के प्रतिनिधि, हम कृष्ण के प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, कृष्ण की सरकार है, माया की सरकार है, कृष्ण के जगत में भी माया ने शासन कर रखा है और माया अपना जाल फैला रही है, हम कुछ भी नहीं चुने कृष्ण भक्त हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं कैसे इस भौतिक जगत के लोगों को माया के प्रभाव से बाहर निकालना है, कैसे प्रचार करना है, टेक्निक्स अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे, कहाँ बम डालना है, बस जाके प्रवचन देना, प्रवचन देना मतलब एक बम छोड़ने के समान, कहाँ बहुत सारे एटम छोड़ के आ जाने हैं। एक बार बम होते हैं इसको जमीन पर अंदर डाल देते हैं और कोई लोग चलेंगे जैसे यहाँ पे तो बम करके फटेंगे। ये टाइम बम है तो टाइम लगा, टाइमर लगा के छोड़ दिया, अगले एक घंटे में फटेगा। वैसे ही प्रभुपाद जी की पुस्तक है टाइम बम में से लगा कुछ और में छोड़ देंगे, और टाइम कब सेट है पता नहीं, प्रभुपाद जी जानते हैं कब फटेगा, असल कृष्ण भक्त बन जाएंगे सब लोग। तो उस प्रकार के आंदोलन जैसे आंदोलन के एक क्रांतिकारी भावना एक प्रचारक में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रचार में तकलीफें आएंगी और आप क्रांतिकारी स्पिरिट में नहीं है, एकदम रेवोल्यूशनरी स्पिरिट में नहीं है आप, प्रचार थोड़े से करके डर के भाग जाएंगे। या खुद हम माया में फंस जाएंगे, हम भी कि माया इतना आक्रमण करेगी हमको फंसने के लिए, या तो माया में फंस जाएंगे, और अगर क्रांतिकारी भावना रही, भक्तों का संग रहा, तो हम उसमें से माया में से बाहर निकलकर खुद बाहर निकलेंगे और लोगों को भी बाहर निकल ले जाएंगे। तो प्रचार मतलब यही करना है, हमें खुद भक्त बनना है और जितना हो सके लोगों को भक्त बनाकर भगवान के धाम लेके जाना है। तो भक्त अवैधता से प्रचार करता है, घबराता नहीं कि क्या होगा, कभी कभी आदेश मिल सकता है आपको कि अभी जाइए जगह पर जाकर प्रचार करिए, अरे वहां पर कैसे प्रचार करेंगे, कोई कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करता हूं। तो पापा जी पहले विदेश गए थे तो ऐसे सोचते थे शुरू में, यहाँ कैसे लोग भक्त बनेंगे, यहाँ तो इनके पास इतना इंद्रदृष्टि में डूबे हुए हैं लोग, लेकिन उनको विश्वास था मेरे गुरु का आदेश है मैं प्रयास करूंगा। परिस्थिति को आप सोचें, एक साधारण 70 साल का, देखने में साधारण 70 साल का व्यक्ति अमेरिका जैसे देश में गया है जहां पे कुत्ते बिल्ली ऐसे लोग केवल नशा करने में और मैथुन करने में मग्न है, ऐसे को कृष्ण के बारे में बताना, पता आपको कुछ तो संपर्क नहीं है ऐसे ऐसे प्रकार के लोगों से जो कि हिंदू दृष्टि में डूबे हुए हैं। अगर आप समझिए कोई एक, अगर आपने किसी का अनुभव हुआ हो कोई डिस्कोथेक में जाना, कोई बार में जाना, यहाँ पे सब लोग एकदम टू द कोर इंद्र तृप्ति में है, शराब के नशे में धुत, सोचिए उनको लगे बैठ के प्रवचन देना, उनको समझने की कृष्ण तत्व क्या है, कैसे संभव है। छोटा सा एक बार है, छोटा सा एक पब है, छोटा सा डिस्कोथेक है, या उसने पूरा अमेरिका ऐसा था, एक बड़ा डिस्कोथेक, एक बड़ा पब जहां सब लोग इन व्यक्ति में, सारा माहौल ऐसा था उस टाइम पे, तो अभय कब आता है प्रचार में, या आपको विश्वास होता है कि ये कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी या कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस, ये जो पथ है कृष्ण भक्ति का, इससे व्यक्ति के जीवन में सुख आ सकता है। मेरे जीवन में सुख आया, मेरे जीवन में परिवर्तन आया, तो मैं जिसको भी दूंगा अगर उसको स्वीकार करेगा उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, वो व्यक्ति सुखी हो पाएगा। और कृष्ण उस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति स्वीकार करते देख कितने प्रसन्न होंगे, कृष्णा के आंखों में आंसू आते हैं इस टाइम, वो लोग देखते हैं, अरे कृष्णा एक मच्छर आएगा मेरे भक्ति के, हमको ध्यान बढ़ा देता है, उधर इतना मेरे शरीर में मच्छर इतना शक्तिशाली है वो ध्यान बढ़ा सकता है, कितना वो भी देखिए विचलित होता है। Had some 2-3 points ahead to speak.
have a very volatile memory. But I'm thinking and speaking, not that I'm prepared. What was I speaking on?
Fearlessness comes with faith that it will give happiness.
Krishna.
जब देखते हैं व्यक्ति को भौतिकवाद में डूबा हुआ है उनको बहुत दर्द होता है हृदय में ये देखो ये अरे मेरा ही बच्चा है ये मेरे को भूल का सोचा मैं सुखी होऊंगा मूर्ख है ये दुख भोग रहा है जैसा वो ऊंट रेगिस्तान में खा रहा है कैक्टस प्लांट को उसमें खून निकल रहा है सब सोचा कितना अच्छा है वाह एक और चाहिए मेरे को ज्ञानवान व्यक्ति देख रहा है नहीं भूल क्या ये खून को पी रहा है अपने उसी प्रकार भगवान जब देखते हैं भौतिकवादी लोगों को व्यक्ति करते वक्त हृदय में दर्द होता है उनके भगवान के हृदय का दर्द देखकर के दर्द को देखकर भक्त के हृदय में दर्द होता है उसे तो मैं क्या करूं कैसे भगवान के दर्द को खत्म करूं कम करूं कम से कम इसलिए वो प्रचार करता है वहां से उसको इंस्पिरेशन आता है कि भगवान को तकलीफ हो रही है अपने बच्चों को भौतिकता में लिप्त देखकर तो क्यों ना मैं प्रयास करूं अपना जितना हो सकता है इन लोगों को भौतिकता से बाहर निकालने के लिए देखिए मैं नहीं कर सकता इनको प्रचार मैं केवल प्रयास कर सकता हूं भगवान आप मेरे द्वारा शक्ति दें कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन किसी व्यक्ति के हृदय को प्रवर्तन करना है तो वो कृष्ण शक्ति परिवर्तित करती है ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए हमें कि हमने उसको प्रचार किया और उस व्यक्ति का हृदय बदल गया हमने उसको प्रचार करके धन बनाया है इसके मतलब आप ही भक्ति बने अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप किसी दूसरे को क्या भक्त बना सकते हैं ये वचन भक्त के मुंह से नहीं निकलते कभी कि मैंने उसको प्रचार करके भक्त बनाया क्या भक्त हैं और क्या प्रचार करेंगे और क्या किसी दूसरे को भक्त बनाएंगे लेकिन हमने कुछ प्रयास किया भगवान के बारे में बोलने का समा भगवान ने उसके हृदय में परिवर्तन किया और आज ये भक्ति कर रहा है ये बात ऐसा सोचता है इस प्रकार से बिना कोई क्रेडिट लिए बिना कोई मान सम्मान के भक्त केवल भगवत ज्ञान को बांटता रहता है ये समझते हुए कि जो भी इसको स्वीकार करेगा जिसको ये ज्ञान जिसको जो जीवन में उतार पाएगा उसके हृदय में परिवर्तन आएगा और उसको देखकर हृदय के परिवर्तन को देखकर भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं यही भक्ति है जो अपने जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं तो कितना हमारे अंदर प्रेम है भगवान के प्रति वो एक कठिनाई की परिस्थिति में टेस्ट होता है जब प्रचार में तकलीफ आती है फिर भी हम प्रचार करते रहते हैं नहीं कि तकलीफ है तो अभी जाओगे अभी प्रचार कैसे करेंगे इतनी तकलीफ आ रही है हमारा जीवन जोखिम में प्रभुपाद जी के शिष्य ने इतना अपने आप को पूरा बेच दिया था प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी शरीर आपकी संपत्ति जैसे इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल करिए चाहिए तो वो कुचल दिए चाहिए तो हमें आलिंगन करके हमको गुणगान करना चाहे हमको ऊपर चढ़ाना चाहे जो करना है आप करिए शरीर आपकी संपत्ति है मन आपकी संपत्ति है गोपाल जी को बेचकर ऐसा कुछ भी जैसा गोपाल जी बोलते थे करने को तैयार हो जा रहे थे तो उस प्रकार की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ब्रह्मचारी को कि वह भयता से ज्ञान को प्रचार कैसे न कैसे लोगों को कृष्ण नाम देना हरी नाम देना दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ टीचिंग ऑल फिलॉसफी सारा फिलॉसफी तत्व ज्ञान देने का सार ये है कि अंततः व्यक्ति को कृष्ण नाम में रुचि दिलाना नाम जप नाम कीर्तन तो जितने हद तक हमें विश्वास है जैसे हरिदास ठाकुर को कितना विश्वास था हरिनाम पे मुस्लिम गवर्नमेंट बोली तुम छोड़ दो, तो मुस्लिम हो तो इतने सौभाग्यशाली तुम्हें मुस्लिम जन्म मिला है, तुम क्यों हिंदुओं का नाम ले रहे हो, हिंदू भगवान का नाम ले रहे हो, तो मार डालेंगे तुम्हें हम अगर तुम हिंदू भगवान का नाम लोगे तो। क्योंकि वो हिचकिचाए नहीं।
हाँ ठीक है, भगवान अल्लाह और राम तो एक ही बात है, तो अल्लाह का नाम ले लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। मारना है मारो आप, मेरे शरीर का हजार भागों में भी काटोगे तो हर भाग से हरे नाम ही निकलेगा। फिर डायलॉग ही था कि दिखाया जब उनको मारा गया था 22 मार्केटों में, ऐसा नहीं कि बहुत पिटने वाला बुरा नहीं, बताओ तो फॉलो मैं अल्लाह का नाम लेने को तैयार हो गई, छोड़ो 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 मेरे को। नो, ही वाज फोकस्ड ऑन चैंटिंग द होली नेम्स, विश्वास। तो जितने तक हमारा विश्वास बढ़ता है उतने तक हम अभय हो जाते हैं प्रचार करने में। किस बात का डर है, भगवान है ना हमारे साथ। डर तो जब लगता है जब वो कृष्ण कृष्ण पर पूरा विश्वास नहीं है, तो कृष्ण में विश्वास आता है डर कैसा, किस बात का डर। जैसा उदाहरण दिया था मैंने, छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ होता है तब नहीं लगता, बस सामने वाले झापड़ मार देगा वो, पिताजी के ऊपर चल जाएगा ना पिताजी, वो कुछ भी गए तो पिताजी है ना, पिताजी तो भग भी जाके फाड़ करके बचा करके आया था, माया के मुंह पे झापड़ मारना है प्रचार करना। मैं कृष्ण के पास आता रहा है कृष्ण कृष्ण क्या करेगी माया की, माया जैसे एक दिखा तो कृष्णा है, छोड़ो छोड़ो मेरे भी बॉस है। तो जैसे भक्त जा करके आता तो कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, नहीं तो निकटस्थम आया था रे पकड़ लेगी माया ने। तो कभी भी भक्त को माया की शक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कितने बड़े भक्त ने बन जाए माया हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, कितने बड़े प्रवचन क्यों ना दे सके, कितने लोगों के हृदय को क्यों ना हम प्रभावित कर सके, फिर भी माया हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। जहां हमने माया की शक्ति को साधारण समझा, ऐसा सोचना ही माया में प्रधान है, ये सोचना ही माया का प्रभाव के कारण है ऐसा सोचना। तो अभयता से प्रचार करने का मतलब ये नहीं कि माया को नजरअंदाज करना या उसको साधारण समझना, माया की शक्ति को समझना, माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन साथ साथ भगवान के चरण कमलों को पकड़ कर रखना, हरे नाम पर पूरा पूरा विश्वास होकर या हरे नाम की शरण लेते रहना, कृष्ण तत्व का शरण की शरण लेते रहना, तो फिर माया क्या करेगी, कृष्ण हमारे साथ हैं तो फिर माया क्या कर सकती है। नहीं तो मैं तो माया से कुछ लड़ ही नहीं सकता, मैं माया इतनी शक्तिशाली मैं एक क्षण में खत्म कर देगी। जैसे प्रभुपाद जी भक्ति सरस्वती उदाहरण देते हैं कि एक बार एक बड़ा हाथी चलते हुए आ रहा था, तो एक मेंढक बाजू में खड़ा था, उस मेंढक को कुछ 50 पैसे कुछ मिले थे पैसे, तो सोचा अभी तो मैं बहुत अमीर हो गया, 50 पैसे मिल गया मेरे को, और वो अपना सीना तान के छाती फुला के खड़ा था, इतना मैं हाथी आता देखा, हाथी बोला हट जाओ मेरे रास्ते से, क्यों 50 पैसे का मालिक हूं मैं, हाथी क्या सुनते चला गया, इसकी चटनी बन गई मेंढक की। तो भाई बोलते ऐसे हमें थोड़ा सा कुछ मिल जाता है मान सम्मान, थोड़ा सा कुछ प्रतिष्ठा, थोड़ा सा कुछ धन या थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, हम सोचते हैं अभी माया मेरा क्या करेगी, थोड़ा सा ज्ञान ले लिया कृष्ण भक्ति का, थोड़ी सी तपस्या कर ली भक्ति में आके, थोड़ा नाम जप कर लिया, थोड़े पोस्ट मिल गई, हाथी से यहां धन खड़ा हो जाता है, पापड़ बना देगी माया, कचूमर पाउडर या पेस्ट, इतनी शक्तिशाली माया, कुछ नहीं कर सकते हम अपने आप से माया के सामने, कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ लेकिन कृष्ण के शरण में माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, तो मेरी शरण लेता है भगवान बोलते हैं, मैं उसे माया से पार कराता हूं, स्वयं से माया से पार नहीं कर सकते। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन कोरम रे आत्मसाथ आमी तो खंगाल
कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे।
अपने से तो मैं कंगाल हूं, मूर्ख हूं, कुछ नहीं कर सकता मैं, हाँ लेकिन कृष्ण गुरु आप मेरे साथ हैं। तब व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार से अभयता की भावना आती है, निर्भय होकर वो प्रचार करता है, अभी क्या डर। और दूसरा पॉइंट है कृष्ण भक्ति के तत्व को हमेशा बचाता है, वो डिफेंस द प्रिंसिपल ऑफ योर भक्ति। तो प्रचार में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कि मायावाद फिलॉसफी का प्रचार करेंगे, शून्यवाद, अलग अलग प्रकार के तत्व ज्ञान को प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो भक्त है जो महाप्रभु के चिंते भेदाभेद तत्व स्थापित करना जान सकता है, लोगों को समझा सकता है कैसे कृष्ण जीव अलग अलग हैं, कृष्ण का एक स्वरूप है और स्वरूप में कृष्ण की पूजा करनी है। इस प्रकार से वो कृष्ण तत्व को, कृष्ण भक्ति के तत्व को बचाता है इन, क्योंकि भौतिक जगत में धर्म के नाम पे 99% से भी ज्यादा लोग सही प्रकार के तत्व ज्ञान को पालन नहीं कर रहे हैं और मायावादी ज्ञान को भी पालन कर रहे हैं। 99% लोग ऐसे ही हैं, ऑलमोस्ट इन चार संप्रदायों को छोड़कर, जिसमें ये चार संप्रदाय भी पूरी पूरी बची नहीं है अभी, तो उनको छोड़कर ऑलमोस्ट सब जगह जो ज्ञान है वो सही तत्व नहीं प्रचार किया जा रहा है। तो हम ऐसे समय पर हैं यहाँ पे अधिकतर धार्मिक ज्ञान या भगवत तत्व के संदर्भ में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो गलत है। ऐसे में शुद्ध भक्ति के तत्व को बचाकर रखना बड़ी बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारी। हमको पहले फिक्स्ड होना चाहिए फिलॉसफी में, समझ पक्का समझ में आना चाहिए और लोगों को समझाना आना चाहिए। जैसे हम लोग इसलिए हम लोग इतना साइंटिफिक लॉजिकल लेक्चर्स लेते हैं आप लोग के लिए, इससे आप लोग सही तरह से प्रस्तुत कर सके इस फिलॉसफी को, क्योंकि अधिकतर लोग आपको मिलेंगे जो इस फिलॉसफी के विरुद्ध जाएंगे, ये प्रूव करेंगे कि कैसे आपकी फिलॉसफी गलत है। तो आपको शुद्ध भक्ति के तत्व को प्रस्तुत करना आना चाहिए, शुद्ध भक्ति की सुरक्षा करना आना चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अपना खुद का जीवन उस भक्ति के तत्वों के आधार पर जीना चाहिए। अगर हम खुद उस प्रकार से जीवन नहीं जी रहे हैं, भगवत गीता के को हमने अपने जीवन में नहीं डाला है, तो हम उसको प्रचार भी नहीं कर सकते। वी शुड बी लिविंग भगवत गीता, वॉकिंग टॉकिंग भगवत गीता। हमारी हर बात भगवत गीता भागवत पर आधारित होनी चाहिए, जो मुंह से कथन निकले, जो शरीर से क्रिया हो, जो मन में विचार आए, इट शुड बी आवर एस्पिरेशन। तब हम जाके भक्ति के तत्व को सुरक्षित रख पाएंगे। किसी का कोई प्रश्न? अगला पॉइंट बहुत लंबा है, मैं उसको लेना नहीं चाहता अभी। बेसिकली भगवत गीता और भागवत इन शास्त्रों के ज्ञान को हमें जीवन में उतारना चाहिए। कहने का अर्थ है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं वॉक योर टॉक, या मतलब अगर हम प्रचार करते हैं कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। और हम काली का जप करते हैं, काली 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 या शिव शिव ओ नमः शिवाय। हम खुद इसको अपने जीवन में नहीं डालते हैं। हम प्रचार करते हैं इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए, इंद्र तृप्ति जानवरों के लिए होती है। तो वही बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन इज फॉर एनिमल्स, भक्ति इज फॉर ह्यूमन बींग्स। तो हमें भी खुद नहीं करना चाहिए ऐसा। कुछ
मानिए कोई
आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं हम इंद्र तृप्ति नहीं करते हैं, हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं।
हमें
तो समझाना पड़ेगा ना ऐसा कि हम कृष्ण भक्ति हम कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं, हम इंद्र तृप्ति नहीं कर रहे। कृष्ण प्रसाद में जितना प्रसाद लेते ज्यादा शुद्धिकरण होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी खाते हैं भगवान को भोज चढ़ाकर, हमने कोई लिमिट नहीं डाली है। हाँ, लेकिन कृष्ण प्रसाद कृष्ण को भोज चढ़ाकर कृष्ण की सेवा की भावना से स्वीकार करना चाहिए। तो जो भी हम फिलोसफी प्रचार करते हैं उसको जीवन में डालना चाहिए, हमें एटलीस्ट डालने का प्रयास करना चाहिए। भले अभी पूरा डाल नहीं पाए, ऐसा नहीं कि जब तक पूरा नहीं डाल जाए तब तक हम विचार नहीं करेंगे। हम बोलते ध्यानपूर्वक जब करना चाहिए, हम क्या करते हैं नहीं, फिर भी प्रचार करते हैं क्योंकि हम प्रयास तो कर रहे हैं ध्यानपूर्वक जब करने का, तो प्रचार कर सकते हैं। ये कोई हिपोक्रेसी नहीं है, बोल कुछ रहे कर कुछ रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं अच्छे से जब करने का। और फिर बोलते हैं ध्यान से जब करना चाहिए, तो खुद एक माला जब करते हैं और दूसरों को बोलते हैं रोज थोड़ा वाला कम से कम आप कितनी कर, नहीं वो ठीक है लेकिन तुमको सोना वाला कर देंगे। ऐसा नहीं चलेगा, फिर आप किसी के हृदय परिवर्तित नहीं होगा उससे। पहले आचार फिर प्रचार, पहले आचरण जीवन में उतरना चाहिए। कुछ ऐसे शुरुआत में ऐसा नहीं पहले दिन आए आप लोगों को प्रचार के लिए भेज दिया हमने, नहीं, एक साल दो साल ट्रेनिंग मिलती है। उस समय में भक्ति के तत्वों को जीवन में उतारना है धीरे धीरे करके, या चपता चपता धीरे धीरे अंदर जाता है, अंदर जाके मशीन चलती है, पछता है जाके जाके खून में मिलता है, फिर जाके शक्ति आती है उससे, तभी प्रिंसिपल उतरा, एक कसका उतरा, अभी फिर दूसरा खाक अंदर पाव नीचे भर गया, अच्छा खून से मिला शक्ति आई, फिर अगला प्रिंसिपल। ऐसे करके कुछ साल बिताने के बाद जब कुछ हद तक अंदर चला गया, बहुत कुछ अंदर शक्ति आ गई अभी आध्यात्मिक, फिर जब आप कुछ बोलेंगे तब लोगों का असर पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, कई बार भक्तों मंदिर में आते थे पुणे में, तो मुझे प्रचारक बनना है, पहले भक्त बनो, हो साल दो साल ट्रेनिंग लो, प्रचारक बनना सीधा, पहले नए नए प्रचार करना है। वो अहंकार के कारण बोल रहे हैं ऐसा, होना चाहिए लोग हमारे बातों को सुने। हर सब लोग चाहते हैं कि हम कुछ बोले, लोग सुने हमारी बातें, कुछ 15-20 लोग 50 लोग 100 लोग हमारी बात सुने, एक अहंकार अच्छा लगता है, हाँ कोई बात हमारी बात सुनते हैं लोग। सब लोग बोलना चाहते, कुछ सुनने को तैयार भी नहीं हमारी बात। बहुत ही जगत में ऐसा ही होता है, सब बोल ही रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा, सब बोलने में इंटरेस्ट है। तो ये ऐसा होना कि एक व्यक्ति बैठा बोल रहा है, माइक है और सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, अरे कब हम भी बैठेंगे सीट पर, कब हम भी प्रवचन देंगे, लोग हमारी बात सुनेंगे। तो ये अहंकार ऐसा बोलता है शुरू शुरू में, सेवा की भावना नहीं होती, इसलिए शुरू में सीधा प्रचार नहीं दिया जाता है। जब तक आप इस भावना में आए कि यहां पर बैठे हैं कि सब सुनने वालों के सेवक के रूप में, क्योंकि सेवा करने का ये तरीका, तो ठीक है ये तरीका करेंगे, जिस प्रकार से इन भक्तों की सेवा कर सके, चलो प्रचार भी तरीका है सेवा करने का, ज्ञान बांटना वो भी करेंगे। जब तक ये भावना अंदर चली नहीं जाती, जाके पच नहीं जाती और उतर नहीं जाती, शक्ति नहीं आ जाती, उससे कुछ हद तक साक्षात्कार नहीं होता इस बात का, तब तक प्रचार करने में हमें शक्ति नहीं आएगी। तो प्रचार लाइक ये तो एंड में चालू होता है। प्रभुपाद जी ने प्रचार करने से कितनी तैयारी करी, लाइफ टाइम प्रिपरेशन, पूरा जीवन प्रभुपाद ने तैयार किया जाकर फिर एंड पर जाकर प्रचार करने गए। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ने कितने साल बैठकर चौसठ माला का जप करके तैयारी की, हृदय को शुद्ध किया, फिर जाकर प्रचार होता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम शुद्ध भक्ति मंदिर में प्रचार नहीं करेंगे, बेसिकली जब तक आदेश नहीं मिलता जैसे नित्यानंद प्रभु ने किया था, तब तो महाप्रभु आदेश नहीं आया तब तक उन्होंने प्रचार करना चालू नहीं किया। तो जब समझे हमारे अथॉरिटी समझेंगे कि अभी हम तैयार हैं प्रचार करने के, फिर हमको भेजेंगे। मतलब वो समझते हैं कि इन्होंने काफी चीज उतार ली, दे आर लिविंग देयर लाइफ बेस्ड ऑन भगवत गीता भागवत, काफी तक उतार ली, अभी समाज को समाज में भगवान के प्रतिनिधित्व के रूप में जा सकते हैं। भगवान का प्रतिनिधित्व करना बहुत बड़ी बात है, भगवान के बिहाफ पे जाना, बिकमिंग गॉड मैन, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत साधारण चीज नहीं है। आपके आचार एकदम स्पॉटलेस होना चाहिए उसके लिए। सन्यासी रे अल्पच्छित सर्वलोक गाय, सन्यासी रे अल्पच्छित, सन्यासी अगर कुछ थोड़ा भी अलग करता है तो तुरंत बात फैलती है वो, तो सन्यासी ने ऐसा किया, कोई और करेगा तो बड़ी बात नहीं है। सोचे बड़ी से सन्यास लेके और मोटरसाइकिल पर रू 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 गोबल करके जा रहा, रू 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 सन्यास के बीच में डंडा लेके कॉगल्स पहन के टोपी पहन के और मोटरसाइकिल डंडा लेके साधारण व्यक्ति कितने जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता उनको। सन्यासी को छोड़ना है कुछ करेगा तुरंत सर्वलोक का है। इसलिए एक प्रचार प्रचारक भी ऐसे ही हो जाता है, बहुत सावधान रहना पड़ता है उसके, कि आचरण के शब्द तोल के निकालना पड़ता है। एक गलत से बाहर आ गया पकड़ पकड़ लिया जाएगा, पब्लिक पकड़ लेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रचारक बनना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए तैयारी तैयारी चाहिए। उन तत्वों को जीवन उतारने में समय लगता है,
in
general, हर किसी के लिए recommended नहीं है निर्जन भजन।
Like not only निर्जन भजन, we said
preparation means this is our preparation. He prepared in a particular way, we prepared in a particular way. As per what we are told by our spiritual authorities. This is a preparation. Ye bhakta program preparation hai. Tayar karaya ja raha hai aapko maa se ladne ke liye. So this is our preparation. For him it's very solitary bhajan. For us this is preparation. प्रपाल जी के लिए अलग तरह की प्रिपरेशन थी। राधा दामोदर के मंदिर में बैठकर उन्होंने इंटेंस जाप और प्रार्थना और पुस्तकों को लिखना, दैट वाज हिज प्रिपरेशन, दिस इज हर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए पूरा टाइम, सारा जीवन। वी आर लाइफ टाइम स्टूडेंट्स, ऑल्दो हम प्रचारक बन जाए लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट्स नहीं, फिर भी हम शिक्षक शिक्षक नहीं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी, आजीवन विद्यार्थी हैं हम लोग आध्यात्मिकता के। ऐसा नहीं टीचर बन गए तो भी विद्यार्थी नहीं है, कुछ लोगों के लिए विद्यार्थी टीचर हैं लेकिन फिर भी विद्यार्थी भी हैं कुछ लोगों के लिए। लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन कोई मिल जाए, but still before we start the process of teaching some preparation is required. It's going on surely, it's going on. Shri Prabhupada ki jai, jai Gautam Anandi
for meditation. We like the point.
another is point of understanding. Like, initially when we read, we don't understand a point. So now to stop over there, to try to understand, or as you said, write it down, keep it for later reference. Or, how to learn?
इनका प्रश्न है कि कोई पॉइंट पढ़ते पढ़ते समझ नहीं आया, समझो उस पॉइंट को क्या करना चाहिए, या तो लिख के छोड़ के आगे चल देना चाहिए पढ़ाई, आगे पढ़ते रहना चाहिए, या सोच उस पर समझने का प्रयास करना चाहिए उस टाइम. इज दिस योर क्वेश्चन?
एंड देन इफ वी हैव टू आस्क अस लाइक सी एंटीबॉडी एंड ही इज नॉट अराउंड, देन लाइक
डिपेंड करता है आपका वो समझावट ऐसी की है कि इसके समझे बिना आप आगे नहीं समझ सकते कुछ भी. अगर ऐसा है तो तुम्हारा ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसा जनरली ऐसा नहीं होता है. सब कोई तात्पर्य कोई पॉइंट समझ नहीं आया, वो तात्पर्य छोड़ दो, इस तात्पर्य पढ़ लो, वो तात्पर्य बाद में किसी से पूछ लेना, नॉट नेसेसरी नेक्स्ट तात्पर्य इस क्रेडिट को दिस तात्पर्य डेफिनेटली तो नहीं होता है कुछ. सो यू कैन ऑलवेज स्किप दैट. इनफैक्ट एक भक्त को बोले, हमेशा आपकी भक्ति में ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, लीव इट. इट विल कंसर्व फ्रॉम सम सीनियर बेस्ट, यू कैन नॉट वेट. कुछ समय आएगा जब भगवान आपको दोबारा, जब आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आएगा, फिर कुछ और चीज समझ में नहीं आएगी. भगवान ऐसा कुछ हमेशा करते हैं जिससे कि वो अचिंत्य रहे. आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि मैं अचिंत्य हूं, मेरे को पूरा समझा नहीं जा सकता है, इसलिए भगवान आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर देंगे जो आपको समझ नहीं आएगी. जब मेरे को बड़े सीनियर ड्यूटी बता रहे थे कि हवा तुम तो मैं पूरी पढ़ ली, प्रवचन भी देता हूं, लेकिन दूसरे स्तंभ में जो ये सृष्टि का क्रिएशन जो होता है, निर्माण, अरे अरे कहां से क्या निकलते हैं, तो क्लियर नहीं है अभी तक मेरा पूरा, इतना आउट ऑफ है. भगवद गीता का 13वां अध्याय, कई सन्यासियों ने 13वां अध्याय पर पुस्तकें लिखी है, इसको उनके सन्यासियों ने 13 एक्सक्लूसिव 13 चैप्टर, टफ, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है भगवद गीता. आसान नहीं उसको समझना, कई टिप्पणियां दी लोगों ने, कई प्रवचन दिए, लेकिन प्रवचन देने के बाद भी बोलते हैं बोल तो दिया लेकिन ढंग से समझ नहीं आया हमको ये पॉइंट पे. ऐसा होता है कभी कभी. तो भगवान का तरीका है अपने भक्तों को नम्र रखने के लिए, तो डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, कीप इट साइड टू आस्क टू सम सीनियर डिवोटी. तो सीनियर के साथ ये संग करने का तरीका है, अपने कोई प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है, लेके जाए उसमें चर्चा करें. Is one way of taking a suggestion from seniors. We should have some points to discuss with them. But generally, अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं देनी चाहिए, सोचते कि अभी जो सब पॉइंट समझ नहीं आते हो. कई लोग ऐसे होते हैं, आगे जाएंगे नहीं जब तक समझ में नहीं आता. ये अहंकार का लक्षण है, नहीं जाएंगे नहीं आगे, समझ हम सबको समझ करेंगे. हम जब करेंगे तो ऐसा कि बस एक चाहे एक माला करें, ऐसा जब करेंगे कि एक मिनट भी मन ना भागे, बिल्कुल एक मंत्र ध्यान से सुनेगा तब गिफ्टी माला बजाएंगे. इसलिए 11 साल हो गए कि माला करते करते नहीं, कभी आगे जा नहीं पाएंगे. तो भाजी कब बोलते थे, फर्स्ट क्वांटिटी देन क्वालिटी. 16 माला पे आ जाए बाद में क्वालिटी बढ़ेगी. तो चले आगे चले, कोई समय नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दो कुछ समय के लिए, आगे अपनी पढ़ाई चालू करिए.
फिर अभी कहा कि जो पुजारी होता है उसके लिखा नहीं होता कि ये पुजारी है, जैसे कोई फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जा रहा है उसमें उसके बाथरूम में लिखा नहीं रहता कि ये टीचर है. तो मानिए जैसे कि आज 50वां दिन प्रभु है प्रेजेंट टाइम में, और वो खूब की सेवा लिए हैं, अगर वो आज उस सेवा में उनकी अगर आसक्ति है तब तो सेवा कर रहे हैं. अगर मान लीजिए हमें ये फील हो जाए घर से कि सेवा में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है आज हमें ये कर रहे हैं, आप हमें मालूम है कि कल के दिन हम इसको अगर ये सेवा करनी है, अगर मासिक की नहीं रखेंगे तो वो सेवा हम अच्छी तरह से नहीं करते.
बहुत हद तक इनका पॉइंट वैलिड है कि अगर सेवा से आसक्ति नहीं होगी, सेवा में हृदय लगाकर नहीं करेंगे तो सेवा ठीक से नहीं करेंगे. फिर हम तो सेवा से आसक्ति होने में क्या गलती है, इनका कहने का मतलब है अच्छा ना, सेवा से आसक्ति होगी तो अच्छी तरह सेवा करेंगे. लेकिन सेवा से आसक्ति का मतलब वो स्टैंप लगना है, वो तो हमने बोला नहीं होना चाहिए. तो कैसे आसक्ति भी ना हो,
सेवा भी अच्छी
और बढ़िया सेवा भी हो, ऐसा पॉसिबल है और बहुत जरूरी है ऐसा करना. याद है हमने एक चर्चा की थी कैसे सेवा एक मंदिर में सेवा बदलती रहती है हमेशा, हाँ दो तीन महीने दो तीन साल में सेवा बदल देते हैं, पूरा का पूरा सेवा बदल देते हैं, इसलिए जिससे आसक्ति न हो। तो हमारे सेवा करने का मोटिवेशन जो हमें मिलता है, प्रेरणा जो मिलती है, वो इसलिए नहीं मिलनी, इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें अच्छी लगती है वो सेवा। सेवा करने का हमारा मोटिवेशन होना चाहिए, ये आदेश मिला है हमको सेवा करने का। हाँ, जितने हद तक आपका उस आदेश देने वाले से प्रेम है उतने हद तक आप सेवा को हृदय से करेंगे। भद्रसेन प्रभु है, इनको सेवा दी है कि देवानपुर की सेवा करना है, उनके लिए कुकिंग करना है, उनके कपड़े धोने हैं, उनके लिए पर्सनल सर्विस करनी है, और उनको पता है कुछ टाइम बाद इनको वापस फिर बेलगांव जाएंगे और वहां पे जाकर दूसरी सेवा होगी। यानी वे दो महीने के लिए करनी है, ठीक है, पैसा नहीं कैसे कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा कपड़ा धोते हैं कि एक दाग न रह जाए उसके अंदर। कुकिंग करते तो ऐसा कि थोड़ा नमक ज्यादा थोड़ा नमक कम, क्यों कैसे कैसे हृदय लगता है सेवा में, तो सेवा करने वाले के प्रति प्रेम है। जितने हद तक हमारा उसके प्रति प्रेम होगा उतने हद तक सेवा में ठीक, फिर वो कल बोलता है ये सेवा करो, वो भी उतने प्रेम से करेंगे क्योंकि प्रेम सेवा से नहीं व्यक्ति से है, ऐसा होना चाहिए। सेवा से व्यक्ति होगी और सेवा चेंज हो जाएगी, जो कि होगी। कौन व्यक्ति जो सारा जीवन मूड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, हुए लोगों ने किया 10, 11, 12 साल पीठ खराब हो गई उनकी, या कुछ ऐसे शारीरिक तकलीफें आई और क्योंकि और कोई सेवा सीखी नहीं कभी, तो वो सोचे क्या नहीं क्या शादी कर लेते हैं, तो घर पे जाते हैं बिजनेस करने लग जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, वो लोग ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है उनको। इसलिए मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि इसलिए हमको अलग अलग सेवा में भेज रहे हैं, कभी गौशाला तो कभी प्रॉपर रूम क्लीनिंग, कभी मंदिर क्लीनिंग, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, और जैसे आगे चलेंगे अपनी सेवा अलग 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 भी सब जगह कुछ स्वाद दिलाएंगे सेवाओं का, सब जगह ट्रेनिंग देंगे कि हर सेवा करनी आनी चाहिए। एक कारण ये भी कभी जरूरत पड़े तो वहां जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है कि हम एक सेवा खासकर शारीरिक सेवा हमेशा नहीं कर सकते, कुछ समय में शरीर साथ नहीं देगा फिर क्या। तो हमें आसक्ति सेवा से नहीं होनी चाहिए, सेवा देने वाले से होनी चाहिए। यह हमारे जो सुपीरियर अथॉरिटीज है, बट फिर बोलेंगे अगर अथॉरिटी चेंज होगा तो फिर तकलीफ हाँ होता है ऐसा, तो हमें प्रिंसिपल से अटैच होना चाहिए कि जो भी हमारी अथॉरिटी है उनकी उनकी हम उनसे प्रेम करके उनसे उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे गुरु के प्रतिनिधि हैं, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है, कृष्ण से प्रेम जागृत करना है हमें। देखिए ये भी भक्ति का उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम जागृत करना, लेकिन डायरेक्ट कृष्ण प्रेम नहीं आता है, पहले गुरु और गुरु के पहले सुपीरियर्स हैं उनके प्रति, तो उनसे जितना प्रेम होगा उतने हद तक हम सेवा में हृदय लगा पाएंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए हम करेंगे पूरा। प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे ही करते थे, 2 महीने हुए मंदिर में ज्वाइन किए, चलो लॉस एंजल जाकर नया टेम्पल खोलना है, टेम्पल खोलना है, सब जाकर बोला जाए प्रभु कितना टाइम हो गया आपको आया गया इस मंदिर में, 6 महीने ये टेम्पल का प्रेसिडेंट बन जाओगे, हमको भेजने अभी टिम्बक्टू और वहां गए, अभी आप मंदिर के अध्यक्ष मंदिर जाकर खोलिए अध्यक्ष बन जाइए वहां पे। भक्ति की स्पेलिंग क्या मुझे पता नहीं थी, आप बोल रहे मंदिर का अध्यक्ष बनने के लिए, हाँ मुझे बोल जाओ, जाते थे वो लोग और जाकर जो आता था वो बोलते थे, थोड़ा बहुत जो सीखा था प्रभु जी की पुस्तकें पढ़ के, थोड़ा कीर्तन करते थे जैसा आता था, हर कोई लता मंगेशकर या मोहम्मद रफी नहीं होते, जैसा जिसकी आवाज थी वैसे कीर्तन करते थे वो लोग, जैसा करतार में तो मुझे आना था वैसे करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी से प्रेम करते थे, तो प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे। ये ब्रह्मानंद प्रभु और गंगामणि प्रभु आदेश में पाकिस्तान में जाकर प्रचार करो चलेगा तुरंत, परवाह नहीं की वहां पर कैसे जीवन का भी खतरा है, तो समय समय पर सेवा चेंज हो रही थी, कभी कभी भक्तों की तुरंत अचानक प्रभुपाद जी को सेवा के लिए बोलते, कुछ सेवा के लिए बोलते थे, करते थे प्रभुपाद जी से, लेकिन उनका प्रभुपाद जी से प्रेम था, भाई जो आप बोले मैं करूंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी भक्ति के जीवन। अच्छा आपने प्रश्न उठाया, जनरली लोग सेवा से आसक्त हो जाते हैं, फिर सेवा चेंज होती तो बहुत दुख होता है, सेवा से आसक्त होना जरूरी नहीं, हृदय लगाने के लिए सेवा में, सेवा से आसक्त होना जरूरी नहीं है। उसके बिना भी इनफैक्ट सेवा से आसक्त होकर आपकी सेवा इतनी अच्छी नहीं होगी जितने की सेवा देने वाले से प्रेम अगर है तो सेवा जितनी अच्छी होगी। उसको बहुत मस्त मस्त सेवा होगी क्वालिटी में भी और वॉल्यूम में भी और रिजल्ट में भी। सेवा में जो चेतना रहेगी वो भी बहुत अच्छी रहेगी, जो फल आएंगे वो भी बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप सेवा देने वाले से प्रेम करते हैं। उस प्रेम को बढ़ाना चाहिए हमें, ना कि सेवा में आ सकती।
यहाँ पे एक पॉइंट और उठ रहा है कि मान लीजिए कि हम आगे करके सभी लोग मंदिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट में होंगे तो आगे चल के ये भी तो सभी लोग देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। मानिए आप पुजारी को बुक डिस्ट्रीब्यूटर भेज दिया और जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर है वो पुजारी बढ़ गए तो सारा काम खराब हो जाएगा।
क्यों खराब हो जाएगा?
उनको नहीं आता वो,
क्यों नहीं आता? ये न्यू बक्का ट्रेनिंग प्रोग्राम सब सेवा होनी चाहिए, सब सेवा सिखा देंगे उनको, यहाँ का वहां करो यहाँ का वहां करो,
कोई एक्सपर्ट नहीं हो जितने आज
उतना रिजल्ट नहीं आ पाएगा। शायद वो 50 बुक की जगह 15 बुक ले पाएगा,
वही यही मतलब
चलेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 50 बुक चले जाए लेकिन बुक वो भक्त 2 महीने में या 6 महीने भक्ति छोड़ के चले जाए वो ज्यादा अच्छा है या 15 बुक करते रहे सारा जीवन? क्योंकि वो भक्त अगर आसक्त हो जाएगा सेवा से ज्यादा टिक नहीं पाएगा भक्ति में, तो उसको टिकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्त ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि उसकी सेवा, भक्त को टिकना चाहिए सारा जीवन। ये सेवा दी जा रही है इसलिए नहीं दी जा रही, कोई करने के लिए नहीं है। कभी मत सोचिए ऐसा कोई वितरण करने के लिए नहीं था इसलिए मेरे को भेजा, नहीं आपके शुद्धिकरण के लिए भेजा है, आपकी भक्ति में प्रगति करने के लिए आपको सेवा दी जा रही है। तो रिजल्ट्स को नहीं देखना चाहिए हमेशा, कभी कभी देखना पड़ता है लेकिन जनरली वो परवाह नहीं करते कि रिजल्ट कम भी आएगा। बुक डिस्ट्रीब्यूटर कुकिंग में डालने को उतनी अच्छी कुकिंग नहीं बनेगी, चलेगा। लेकिन वो भक्त को टिकना चाहिए सेवा में, उसका शुद्धिकरण ज्यादा होगा। यहाँ पे ऐसा थॉट अगर समझते हैं तो करेंगे चेंज। अगर सोचते नहीं बुक वितरण में ही ठीक है तो पुजारी बनाने की जरूरत नहीं है, आना सकता अपनी सेवा से तो बताओ करें कि सेवा से आसा बुक रह जाएंगे तो यही रह जाएंगे हम इस जगत में, बहुत नाम नहीं जा पाएंगे क्योंकि भाई आसक्ति भौतिक आसक्ति है। आध्यात्मिक आसक्ति का एक लक्षण है कि आध्यात्मिक आसक्ति में अगर वो आसक्ति की वस्तु से दूर जाती है तो ऐसा नहीं कि हमारी हमारी भक्ति में किस प्रकार की बाधा आती है। जब कृष्णा यशोदा माई से दूर जाते थे यशोदा माई की कृष्ण के प्रति भक्ति कम नहीं होती थी, बढ़ती थी उल्टा। लेकिन हमारे अगर कोई वस्तु है जिससे हम आसक्त हैं वो हमें दूर चली जाए, हमको ना मिले, जनरली हमारी भक्ति में बाधा आती है, इसका नाम हमारी आसक्ति भौतिक थी। आध्यात्मिक आसक्ति के स्तर पर व्यक्ति को हमारी आसक्ति है नहीं आध्यात्मिक, क्योंकि हम इतने भौतिक स्तर पे हैं, हमें जो भी आसक्ति है भौतिक स्तर पे है ज्यादातर। तो भौतिक आसक्ति तो बंधन का कारण है। तो ये अथॉरिटीज इतने मैच्योर होते हैं कि वो जानते हैं कि हालांकि हमारी ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर इतनी अच्छी पुजारी सेवा नहीं कर पाएगा या पुजारी इतनी अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूटर सेवा नहीं कर पाएगा, फिर भी हम दे रहे हैं उसके अच्छे के लिए। ये मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि बस अपना काम कराना है बस, वो किसको इतनी पुस्तकें वितरण होनी चाहिए, नहीं, भक्तों की प्रगति होनी चाहिए। हाँ साथ साथ पुस्तकें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, अच्छा है जितनी भी हो जाए
तो दोनों काम साथ लेके चलेंगे,
दोनों साथ दोनों जितना हो सके, लेकिन इम्पोर्टेंट दोनों में से क्या है, भक्त ना कि वो सेवा। भक्त नहीं करे कोई और सेवा कर देगा, सेवा तो हो ही जाएगी और नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भक्त को टिके रहना चाहिए और टिके ही नहीं भक्ति में प्रगति करनी चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको गौशाला सेवा इसलिए नहीं दी कि वहां पर जरूरत है लोगों की, आपके शुद्धिकरण के लिए सेवा दी है। कभी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए सेवा में कोई करने के लिए इंटरेस्ट में कोई सेवा दी गई है कि मैं इतना एक्सपोर्ट हूं करने के लिए इसलिए कोई सेवा दी गई, नहीं, आपके शुद्धिकरण के लिए सेवा दी है। नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे, सेवा तो भगवान किसने किसी को इंस्ट्रूमेंट बना के करा लेंगे अपनी सेवा, आप अगर वो सेवा कर देंगे तो आपको शुद्धिकरण मिलेगा, सौभाग्य है सेवा मिलना।
से 1 बजे तक सेवा करना चाहिए और 1 बजे तक हमें 2 बजे तक टाइम रहते इसमें पढ़ रहे पढ़ रहे, अभी ये सेवा चेंज होने के बाद 15-20 दिन में हमारा सेवा चेंज होता है तो उसके आगे कैसा टाइम फिक्स करना चाहिए हमको?
सेवा के अनुसार कोई गाड़ी चला रहे हैं, रोड सीधी चल रही है, रोड टेढ़ी हो गई, आपको सीधी चलाते रहोगे गाड़ी? रोड टेढ़ी गाड़ी टेढ़ी कर, गाड़ी को रोड के बीच में रखना है,
अब रोड टेढ़ी हो गई, रोड गाड़ी टेढ़ी, रोड लेफ्ट गाड़ी लेफ्ट, सीधी फिर सीधी, जैसे जैसे रोड चलती रहे हम गाड़ी करें वैसे। नहीं नहीं, मैं तो 2 से 3 किया, 2 से 3 करूंगा
एक्सीडेंट हो जाएगा।
सेवा चेंज होती रहेगी, जीवन का ये एक भाग है चेंज, बदलावट, चीजें बनती रहती बनती रहती बनती रहती, तो समय बनते रहना चाहिए पढ़ाई का, लेकिन 1 घंटा पढ़ाई, आधा घंटा जो भी पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं तो श्रवण, श्रवण भी हो गया तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी पढ़ाई तो होनी चाहिए, चेंज करते रहना पड़ेगा, टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सेवा में पहुंचना निकाल सके पढ़ने के लिए, मन में भावना रहनी चाहिए, चिंतन रहना चाहिए, चिंता होनी चाहिए अगर पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो अब चिंता ही नहीं हो रही तो ऐसा है आग में हाथ चला गया, चिंता ही नहीं जल रहा है, जैसे मैंने दुख दिया है आग में, हाथ तो दुख होगा, लेकिन नहीं पढ़ते तो हमको इमीडिएट कुछ होता नहीं, इसलिए हम नहीं भी पढ़ते चलते रहते ऐसे, बिना पढ़े बिना पढ़े दिन जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, अचानक दिन पाते अपने को बुद्धि छोड़े चले गए, हम तो कहें भक्त, ऐसा होता है, यही प्रॉब्लम है, तुरंत नहीं आता कोई रिएक्शन, हाथ डाला आग में तुरंत रिएक्शन आता है, तुरंत दर्द होता है, एक नहीं पढ़ा कुछ लगता नहीं, अरे माया ऐसी करती है, प्रवचन में भक्त बता रहे थे ऐसा, माया ऐसी आकर्षित करती है, एक दिन नहीं पढ़ो कुछ नहीं होगा तुम्हें, तो चिंता मत करो, रोज तो पढ़ते हो, एक दिन नहीं पढ़ोगे कुछ होएगा क्या, आप उसकी बात सुन लेते नहीं पढ़ते एक दिन, कभी माया ने भी बोलती कुछ हुआ क्या, तुम नहीं पढ़ा, देखा अच्छे हो, रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 3 दिन भी पढ़ा तो चलेगा, इतना समय लगा दो पढ़ने में, धीरे 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 कम होता है, और तुम एहसास भी होता कि कम हो रहा है, एहसास कम होता है जब खत्म हो जाएगा, और महीना 2 महीने 6 महीने बीत जाएगा बिना पढ़े, अंदर से एकदम आध्यात्मिक कमजोरी हो जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा भक्ति में, हमेशा इरिटेटेड रहेंगे, इरिटेटेड मतलब चिड़चिड़े चिड़चिड़े रहेंगे, हम किसी को छोड़ा भी कर दिया अरे क्या करता हूं, नहीं चाहिए ऐसा, हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे, लक्ष्य नहीं। एक बात कर रहा है मंदिर में, वो उनके गुरु उनको बुला के वहां बोले कि अरे कभी तो मुंह में उनका मुंह कैसे खींचा उन्होंने, कभी तो मुंह में स्माइल आनी चाहिए तुम्हारे, मतलब भक्ति डिस्टर्ब नहीं हो रही है, भक्ति चेहरे को लेकर सामने आ रहा तुरंत, ये भक्ति भक्त अभी भक्ति में ठीक से स्थित नहीं आज, उसके चेहरे आंखों को देखकर चेहरे को ऐसा रहेगा ऐसा, जब करते समय तो समझ में आता है कि क्या कौन क्या कर रहा है, फिर ऐसे बैठे हमारे में से एक दो, जब मैं ध्यान नहीं, हाँ हाँ डेंजर बीमारी, मैं फट भी नोट करता हूँ देखा ये सब, इसलिए इसको बताऊंगा बाद में, अलग 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 बीमारी से समझ में आता है कि कितना माध्यात्मिक रूप से कमजोर हो गए, हमको समझ नहीं आता कभी कभी खुद को कितने देखो कितने कमजोर हो गए, कब समझ में आता है, जब तक या तो कोई हो कोई सीनियर ड्यूटी होकर बता दें हमको, नहीं होते तो निकल ही जाते हैं, बात तक समझ में आता है, इसको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, इसको एकदम टाइट पॉड कर देना चाहिए, रोज रोज जितना हो सके, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, लेकिन ध्यान से आधा घंटा हो 15 मिनट भी पढ़े, ध्यान से पढ़े एक वाक्य को, तो पढ़े क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें से पॉइंट निकाल लें, बस पॉइंट भी चूज करें, ब्रह्मचारी के मन में चिंतन चलते रहना चाहिए आध्यात्मिकता का, ब्रह्मचरित ब्रह्मचारी जो ब्रह्म में चरण करता है, आध्यात्मिक स्तर पर जीवन जीता है, स्मरण करता रहता है, वो इसलिए ब्रह्मचारी रहने लायक है, हमें मायाचरित इति कर्मचारी, कर्मचारी बन जाएगा वो, ब्रह्मचारी नहीं बनेगा वो, जो लोग नौकरी करते लोग पैसा लेकर ऐसे ही ब्रह्मचारी भी करा, क्यों बंदे में क्या तनख्वाह मिल रही है, 2 वक्त खाना और कुछ कपड़ा और कुछ रहने के लिए घर कर रहा कर्म, लेकिन सेवा भावना नहीं है,
जिसने सेवा दी उसके प्रति प्रेम नहीं है तो फिर कर्म हो जाता है, वो क्रिया हो जाती है, फिर वो सेवा भावना नहीं आती फिर। हाँ जी,
तो जैसे आप बोल रहे जब जब के सुबह सुबह करना चाहिए, पढ़ने के लिए कुछ टाइम होना चाहिए क्या सुबह शाम ऐसे कुछ?
अभी जो होता है आपने दे रखा, आपके शरीर थोड़ा अलग है तो आपको अपने शरीर के हिसाब से एक समय निर्धारित, एक्चुअली फिक्स टाइम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है फिक्स टाइम नहीं होता ना, कि जब टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे, कभी कभी ऐसा वक्त सोचते हैं वो टाइम कभी नहीं मिलेगा, टाइम आएगा ही नहीं, कुछ ना कोई आता रहेगा सेवा, टाइम निकल जाएगा। ये ऐसा होएगा, आप इसमें थोड़ी बुद्धि हमको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कहाँ पे कितना देना, थोड़ा क्लास अटेंड करें, थोड़ा सेवा भी करें, ठीक है? सेवा तो आपके अथॉरिटी ने आपको दी है आपके केस में, तो उसको फिक्स टाइम पे जाना है, अब कैसे वो सेवा जस्ट करनी है कि मैक्सिमम क्लास मिल सके, आपको ये सोचना चाहिए कि भाई 5:30 में चालू होती है, ठीक है 5:30 से अभी सेवा कब तक है, कितने बजे आपकी सेवा? तो वो भी फिक्स नहीं है, तो ठीक है, तो जब है तो करें, नहीं है तो अटेंड करें, जब जितने भी समझो 7 बजे सेवा होती, कितने बजे होती है सर? होती है सेवा तो
सुबह 7 बजे
शाम की
अभी मैं वो खत्म नहीं कर पाया, तो 5:30 बजे चला आया मैं घर, फिर अभी खत्म कर
नहीं, नहीं कितने बजे खत्म करना होता है
वो सुबह
के लिए चीजें तैयार करनी है ना? अच्छा, वो तो कितने बजे भी कर सकते हैं रात को? अच्छा, आप टिप फिक्स कर सकते हैं टाइम की, 7:30 बजे तक के बाद मैं नहीं रुकूंगा, 5:30 बजे मैं चले जाऊंगा, क्लास चलती चलती रहने दो, और आप जाके अपने क्लिनिक आए, लेकिन 2 घंटा तो अटेंड किया आपने, है ना? तो जिस दिन नहीं है कोई सेवा तो ठीक है जितनी क्लास अटेंड करेंगे, जिस दिन सेवा है तो 7:30 तक अटेंड करके निकल जाएंगे, तो चलेगा वो, लेकिन फिक्स कर लीजिए ऐसा टाइम, और इसी प्रकार पढ़ाई के लिए भी फिक्स करना चाहिए,
तो सुबह या शाम किसी टाइम हो सकते हैं,
किसी भी टाइम, हालांकि सुबह का टाइम ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन सुबह का टाइम हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम भी होता है, फिर उसमें दर्द भी जाते हैं, फिर सेवाएं ऐसी होती हैं, आप लोगों को दोपहर का टाइम दे रखा है, जो भी टाइम दे रखा है वो पढ़िए, और आप जब भी निकल सके आपके लिए, लेकिन निर्धारित करें तो बहुत अच्छा है, इसको साधारण मत समझिएगा कि नहीं पढ़ा चलता है, ये ऐसा सोचना मतलब माया ने पकड़ लिया आपको, ऐसा नहीं माया में गिर जाएंगे, माया ऑलरेडी गिर चुके हैं माया में ऐसा सोचने के कारण, कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ा तो चल जाएगा, एक दिन मत खाइए, एक दिन फिर तो पता चलेगा, एक दिन आधे दिन तो नहीं खाना होता है, 12 बजे फास्टिंग में तकलीफ होती है उनको, वो तुरंत समझ में आता है आधा दिन नहीं खाया तो, लेकिन आधा दिन नहीं पढ़ा उसको हम गंभीरता से नहीं लेते, बीमारी का लक्षण है।
हाउ टू कल्टीवेट मूड स्वाध्याय दैट वी आर स्टडीइंग फॉर आवर ओन सेल्फ, हाउ टू रिमाइंड आवर माइंड, because it become conditioned, for hearing also and for
conditioned to
do
what?
To
reading work.
That we are reading or we are hearing to give just.
आपके केस में ऐसा होता है, पढ़ रहे हैं इसलिए कि प्रवचन देना है, वैसे ही हो जाता है, जो भी पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम यही रहता है कि ये अच्छा पढ़ लिया बोलेंगे यहाँ प्रवचन, प्रवचन वाले लोगों के लिए बहुत होता है, आप लोग यहाँ पे इतना नहीं आया अभी प्रवचन की इसमें, मेरे प्रवचन कहते हैं कि कैसे ये भावना जागृत करें कि अपने शुद्धिकरण के लिए पढ़ रहे हैं, ये जो लोग बहुत प्रवचन दे रहे हैं उनके साथ ही जो बोल रहे हैं अधिकतर होता है ऐसा, जो पढ़ते ये फर्स्ट बार पढ़ोगे वहां पर कोट करूंगा, ये इस ऑडियंस को कोट करूंगा, ये तुरंत भावना जाती है कि दूसरों को देने के लिए होता है, कोई हर्जा नहीं ऐसा सोचने में, ये अच्छा पॉइंट है कोट कर सकता हूं, लेकिन कोट करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम, बट पढ़ते पढ़ते कोट करने का पॉइंट निकल जाए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज सेपरेट थिंग, वन इज आई एम स्टडिंग सो दैट फ्रॉम दिस आई टू प्रिपेयर अ लेक्चर, दैट्स व्हाट आई एम स्टडिंग, जनरली ऐसा होता है कि हम इसलिए किताब उठाया भी क्योंकि हम भागवत से स्टोरी कोट करनी है, तो भागवत को स्टोरी पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे टाइम पे उठाना चाहिए इसलिए कि अभी कोई लेक्चर नहीं देना मेरे को, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूं, जैसे देने कॉन्शियसनेस आई एम रीडिंग फॉर माय प्यूरिफिकेशन, बट अलॉन्ग साइड यू मे गेट अ पॉइंट फॉर कोटिंग, नो प्रॉब्लम, so that I should not get appointed to court. Only then my consciousness is pure. No. But पढ़ने से पहले याद रहना ही अपने आपको. मैं आपको बाद में आपको शरण दिए हुए चार श्लोक भागवतम के गुणगान करते हुए सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वंतोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पठय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेक साधु मत्संगिम मद्गुरो मद्महाधन मत्तुष्टारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तद्दायिन अति नीच उच्च ताड़क हान मुंच कदाचिन मां प्रेम नारित कंठ योस्फुर. ये चार श्लोक साधु गोस्वामी ने बोले थे कि पहली बार श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ किसने लिख कर दिया था. ही वॉज सच एक्सटेसी टू द भागवतम इन हिज हैंड एंड जंपिंग एंड आई वांट भागवत. उस समय उन्होंने चार श्लोक स्पॉन्टेनियसली बोले. कृष्ण करुणा में जब पुस्तक उसके स्टार्टिंग में श्लोक चार श्लोक लिखे हैं. आई हैव डिसाइडेड दिस श्लोक बिफोर स्टार्ट रीडिंग भागवतम टू गेट इन टू द पावर मूड व्हाट्स द ग्लोरी ऑफ भागवत. ये चार श्लोकों में भागवत का गुणगान किया गया है. क्योंकि दो श्लोक जिसको पढ़ के गुरु महाराज को प्रणाम करके ये समझते हुए कि साक्षात कृष्ण की मैं सेवा कर रहा हूं भागवत पढ़ते समय सो दिस कंड ऑफ प्रिपरेशन मेंटल प्रिपरेशन फॉर मिनट और टू दैट्स द प्रॉपर फोकस प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड रीड द स्क्रिप्चर्स. ऐसा करें तो अच्छा रहता है. इट हेल्प्स मी पर्सनली आई डू दैट. इज अ वेरी स्पेशल श्लोकास. इस प्रकार से कर सकते हैं लेकिन बट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी रीडिंग फॉर प्यूरिफिकेशन. एक्चुअली एवरी रीडिंग शुड बी फॉर प्यूरिफिकेशन एंड समहाउ आई स्पीक फ्रॉम दिस ऑल्सो समथिंग. इस समय हो गया है कंटिन्यू करेंगे थोड़ा क्योंकि कुछ और पॉइंट्स है इसी पॉइंट कैसे कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं. हम जनरली चर्चा नहीं करते अभी कर रहे हैं इसलिए इसको पॉइंट को खींच भी रहे हैं ढंग से समझ लें इस पॉइंट को. तो कल इस पॉइंट पर चर्चा करके समाप्त करेंगे. परसों से परसों स्पेशल है परसों नरोत्तम दास साहब को चर्चा करेंगे. तो कल इसी को कंटिन्यू करके ये पॉइंट को समाप्त करने का प्रयास करेंगे.
श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदावय ददाति स्वपरांतिकम् वंदे श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलम् श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरातं सहगणनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणलिताश्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णवेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्यचारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम गायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे हे कृष्ण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचा कल्पतरुभ्यश्च श्री गुरु दीनदारयम्
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
तथा तो कहते हैं कीर्ति हरे स्वामी
समय से हम लोग की ब्रह्मचारी वाले पॉइंट पर चर्चा रुक गई थी तो हम लोग सोचे कि इसको थोड़ा आगे चलाते हैं तो हम लोग ने तीन पॉइंट्स तीन आदेश ब्रह्मचारियों के लिए इस पर चर्चा की है अभी तक पहला
सुबह ही साधना बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए
हम कैसे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ब्रह्मचारियों को कि सुबह की जो साधना सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है और जो शास्त्र अध्ययन है उसमें ब्रह्मचारी बहुत ध्यान से उसकी महत्व उसका महत्व समझे ब्रह्मचारी शुड बी ट्रेन टू डीपली वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रिक्ट साधना ये पहला दूसरा था
कि ब्रह्मचारी जैसे अंतम सेवक बने और ब्रह्मचारी के अंदर अहंकार और ब्रह्मचारी दासों के दास
हाँ यू शुड बी रेडी टू ट्रेन द ब्रह्मचारी टू बी हम्बल मीनियल सर्वेंट्स एट हार्ट हृदय से नम्र भावना रखना चाहिए एक्सपेक्टिंग नथिंग बट रेडी टू ऑफर देयर लाइव्स इन सर्विस ऑफ द वैष्णवर्स किसी से कुछ अपेक्षा ना करते हुए सब वैष्णवों के दास के रूप में सब वैष्णवों की सेवा करें इस प्रकार की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए तीसरा था
तीसरे में तीन पॉइंट नाम पूछी जीव दया और वैष्णव सेवा
टॉपिक क्या था उसका हर हमेशा हेडिंग बताता हूँ chastity and loyalty. But Ramachandra should learn the essential virtue of chastity and loyalty to a Guru Parampara, never searching elsewhere. Ramachandra को अपनी गुरु परंपरा के प्रति जैसे पत्नी पति के प्रति प्रतिबद्धता रखती है उस प्रकार से एक ब्रह्मचारी को खासकर अपने गुरु परंपरा के प्रति बहुत लॉयल्टी होनी चाहिए और चैस्टिटी होनी चाहिए इधर उधर नहीं जाना चाहिए इस पॉइंट पर मैं चर्चा की थी कैसे ब्रह्मचारियों को हम लोग को खासकर शुरुआत में वैसे रूपा जी की पुस्तकों पर ही जोर देना चाहिए उनको पढ़ने पर जोर देना चाहिए तो अगला पॉइंट से संबंधित है कि आप ब्रह्मचारी शुड स्क्रूटनाइजिंगली लर्न एंड कॉम्प्रीहेंड श्रील प्रभुपाद की बुक्स अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी ब्रह्मचारी शुड स्क्रूटनाइजिंगली लर्न and comprehend Srila Prabhupada's books according to our capacity. Brahmachari ko Prabhupada ji ki pustako ko padhna aur samajhna chahiye dhyan purvak bahut gambhirta se bahut gehrai se apni shakti ke anusar ye agla point hai श्री रघुपा जी ने जब संस्था चालू की थी तो अपने सभी शिष्यों को उन्होंने दो जनरल आदेश दिए थे ये किसी स्पेसिफिक नहीं जो भी प्रभुपादानुगा हैं जो भी प्रभुपा जी के इस संस्था में चल रहे हैं भक्ति कर रहे हैं उनके लिए दो आदेश सबके लिए हैं एक सेवाएं करना अनेक 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 सेवाएं जैसे जैसे जो सेवा आती रहे सेवाएं करना ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस और दूसरा पुस्तकों को पढ़ना प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना तो ये दो जनरल आदेश प्रभुपाद जी ने ये प्रभुपाद जी के स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं सब उनके शिष्य या शिष्यों के शिष्य या जो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं किसी भी आश्रम में क्यों ना हो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे सेवाएं करना और शास्त्र ध्यान करना। आप देखेंगे ये आदेश कोई अलग नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश को ही प्रभुपाद जी ने और स्पेसिफिक बना दिया। बस चैतन्य महाप्रभु को आदेश है जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। महाप्रभु ने दो आदेश दिए थे चैतन्य महाप्रभु ने भी कि अपना जन्म सार्थक करो और फिर दूसरों के परोपकार, दूसरों को उपकार करो उनको कृष्णा देकर। अब वही दो चीजें यहां पर भी हैं। जन्म सार्थक कोरी क्या है?
सेवा।
नहीं आवाज बंद करिए, कोई बात नहीं आप बंद कर दीजिए। जन सार्थक करी मतलब कौन सा आदेश है प्रभुपाद जी का? व्हाट इज द कौन को
सेवा
जन सार्थक करी? ये प्रभुपाद जी के दो इंस्ट्रक्शन और महाप्रभु के दो इंस्ट्रक्शन को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो महाप्रभु ने देखा जन सार्थक करी ये दिया, मतलब प्रभुपाद जी ने क्या दिया? पुस्तकें पढ़ो, जन सार्थक करी अपने लिए पढ़ रहे हैं हम ये पुस्तकें अपने जन्म को सार्थक करने के लिए। करो परोपकार वैष्णव सेवा, सेवाएं करना। तो प्रभुपाद जी की जो दो जनरल आदेश है ये दोनों कोई अलग नहीं है, ये परंपरा में ही आदेश चलते आ रहे हैं। तो ऐसा देखा गया कई लोग शुरू हुए इस्कॉन की संस्था में खूब सेवा सेवा ज्वाइन करते थे, 12-12, 14-14 घंटे सेवा, खूब सेवाएं करना। ज्वाइन करते ही लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी में चले जाते थे, सुबह से रात तक बुक वितरण कर रहे हैं। आप लोग का तो कार्यक्रम 10-11 बजे चालू होता था, बुक वितरण का 6 बजे खत्म हो जाता था, वहां ऐसा नहीं होता था। जब बुक वितरण चालू हुआ था तो भक्तों में ऐसी स्प्रिट हुआ करती थी, एक बार भक्त सोचा मैं लेट आऊंगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, लास्ट व्यक्ति हूँ आने वाला, करीब 11:30-12 बजे तक रात को डिस्ट्रीब्यूशन किया और 12 बजे आकर देखा तो सब सन्नाटा था, सोचा सब लोग सो गए, इतनी लेट आया सब लोग सो चुके। अंदर आकर देखा तो पूरा आश्रम खाली था, कोई नहीं आया था, वो पहला व्यक्ति था आने वाला। कोई 2 बजे आया, कोई 3 बजे आया, कोई सीधा मंगल आरती में आ गया, ऐसा लोग के अंदर स्पिरिट हुआ करता था। सेवा 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 सेवा। लेकिन कई लोगों ने दूसरा इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी का दुर्लक्ष कर दिया, पुस्तकों को पढ़ना। पुस्तकें वितरण तो कर रहे हैं लेकिन पहले खुद पढ़ा है। एक बार प्रभुपाद जी ने एक माता जी के साथ ऐसा किया था, एक माता जी पुस्तक वितरण कर रही थी तो प्रभुपाद जी अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी, वो माता जी को नहीं पता था ये प्रभुपाद जी की गाड़ी है। तो ड्राइवर को आगे किताब दिखाने लगी, आप किताब लेंगे ऐसा करके। तो प्रभुपाद जी शीशे ऊपर थे और माता जी ने देखा नहीं कि उनके गुरु प्रभुपाद जी बैठे हैं। प्रभुपाद जी ने ड्राइवर को बोला ले लो किताब, वो ड्राइवर ने किताब ले ली, प्रभुपाद जी पीछे ली किताब, कुछ लिख के वापस दे दिया और उसको किताब माता जी को वापस दे दी। वो बोले नहीं चाहिए तुमको, बोला नहीं चाहिए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? लेकिन अंदर लेके गया तो उन्होंने ऐसे खोला पहला ऐसा पहना पन्ना, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखा था कि मेरे को बहुत खुश हो रहा है कि तुम मेरी पुस्तकों का वितरण कर रही हो, लेकिन क्या तुमने ये वाली पुस्तक पढ़ी? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी साइन करके दिया वापिस। हाँ माता जी बोल रहे प्रभुपाद जी से अंदर, तब तक गाड़ी चली गई थी। लेकिन प्रभुपाद जी चिंतित होते थे जब उनके भक्त खुश होते थे, जब उनके भक्त वितरण करते थे पुस्तकें हैं, लेकिन जब नहीं पढ़ते थे तो वो चिंतित भी होते थे। ऐसे अंग्रेजी प्रभुपाद जी बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप देम हैप्पी, रीडिंग देम विल कीप देम। कि मेरी बुक वितरण करोगे तो मेरे भक्त संतुष्ट रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो रहेंगे, ये तो रहेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम भक्ति में टिक ही नहीं पाएंगे। और इसका कई कारणों में से प्रमुख कारण है कि कई भक्त लोग भक्ति में टिक नहीं पाए, भक्ति छोड़ के चले गए, क्योंकि रोजाना ध्यान पूर्वक रूपा जी की पुस्तकें पढ़ते नहीं थे। अंग्रेजी में दो शब्द हैं रीडिंग और स्टडिंग, या हिंदी में पढ़ना और अध्ययन करना, दोनों में अंतर है। प्रभुपाद जी ने ऐसे पूछा अपने शिष्य से Are you studying my books?
Yes, but I am reading them.
Are you studying my books? तुम समझा रहे पापा आप क्यों समझ पापा जी पूछे क्या तुम मेरे बुक का अध्ययन कर रहे हो हाँ पापा जी बहुत पढ़ता हूँ मैं पापा जी बोले नहीं क्या तुम अध्ययन कर रहे हो इसलिए यहाँ पे शब्द आता है ब्रह्मचारी शुड स्क्रूटनाइजिंगली लर्न एंड कॉम्प्रिहेंड श्रील प्रभुपाद बुक्स अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी पढ़ना मतलब ऐसा नहीं कि पुस्तक ली और घंटा पढ़ लिया ऐसा करके चले हो गया आज की पुस्तक पढ़ना हो गया ऐसा नहीं है आर्म चेयर रीडिंग बोलते हैं उसको तो बैठे आराम से कुर्सी पे और किताब लेके जैसे लोग नॉवल पढ़ते हैं कोई कॉमिक्स पढ़ता है कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है ऐसा नहीं पापा जी की पुस्तक पढ़ ली ऐसा नहीं तो पढ़ने के बारे में पापा जी बोलते थे स्क्रूटनाइजिंग पहले सबसे पहले समझना चाहिए कि पढ़ना हमारी आध्यात्मिक सेहत के लिए आवश्यक है Not reading Prabhupada books is injurious to our spiritual health. हमारी प्रभुपाद जी की पुस्तकें ना पढ़ना हो जाना क्या होएगा उससे देखिए हमारे अंदर अनर्थ जो है अभी खत्म नहीं हुए हम लोग भक्ति में अभी आए हैं सब अनर्थ वही है लेकिन जब हम रोजाना पढ़ते नहीं जैसा कभी कभी ऐसा होता है जंगलों में घास उगती है तो कोई रास्ते पर लोग बाबर चलते रहते हैं तो घास खत्म हो जाती है वहां पर और एक पगडंडी बन जाती है देखा आपने कभी ऐसा रास्ता सा बन जाता जंगल में जब लोग किसी रास्ते में चलते रहते तो बहुत दिन तक नहीं चले क्या आएगा फिर तो घास आ जाएगी तो ऐसे ही हमारे अनर्थ है वो दब जाते हैं नीचे या हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते रहते हैं प्रवचन सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं सुनते रहते पढ़ते रहते 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 जब पढ़ना छोड़ दिया सुनना छोड़ दिया धीरे धीरे फिर अचानक काम वासना आएगी क्रोध आएगा सब अनर्थ एक करके बाहर निकलेंगे प्रभुपाद जी प्रवचन में अनर्थों की तुलना कर रहे थे रावण के सिरों से राम एक तो ठंड मारते थे सर गायब हो जाता था दूसरा सर निकलता था वापस खत्म होता था निकलता था तो इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकें शास्त्र अध्ययन करते हैं और प्रवचन सुनते हैं तो धीरे धीरे अनर्थ दबने लग जाते हैं पूर्ण रूप से खत्म नहीं होते भक्ति ठाकुर अपनी टिप्पणी में लिखते हैं अगर हम अपना जप धीरा कर दें शास्त्र अध्ययन नहीं करें तो बोले तुम्हारे सारे जो पहले आदतें थी टीवी देखने की आदत होगी किसी की फिल्म देखने की आदत होगी किसी को घूमने घामने की आदत होगी कुछ खाने पीने की आदत होगी वो सब आदतें जोर से वापस आती हैं तीव्र इच्छा होती है वापस से उन्हीं सब चीजों को करने की 10-12 साल बाद भी हो सकता है ऐसा 15 साल बाद 20 साल बाद भी हो सकता है ऐसा हुआ है भक्तों के साथ सेवा 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 करते रहे लेकिन शास्त्र अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया ये सोच के कि क्या है सेवा करना सार है वैष्णव सेवा ये सार है पिचिंग इज द एसेंस मतलब बोलते थे प्रचार ही सार है तो पहले बोलते भी थे बुक्स आर माई बेसिस बुक्स आर द बेसिस पुस्तकों के आधार पर प्रचार हो सकता है पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे क्या आपके बोलने में शक्ति कहां से आएगी इससे शक्ति दूसरों के हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा फिर तो पापा जी अक्सर समय समय पर इस पर जोर देते थे पापा जी बोलते थे पुस्तकें मैंने वितरण करने के लिए बाद में ऐसे लिखी है लेकिन पहले तुम्हारे पढ़ने के लिए लिखी है अपने शिष्यों के लिए लिखी है हालांकि चाहे दुनिया के लिए भी है लेकिन पहले खुद तो पढ़ना चाहिए हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं हमसे कोई पूछे क्या लिखा है पुस्तक में नहीं वो आप लीजिए बहुत अच्छी पुस्तक है इसमें लिखा गया है आप पढ़ के देखेंगे ना पढ़ेंगे कभी वो पीछे दिखा देते हैं पुस्तक के पीछे को साल में लिखा होता है जो उस पुस्तक में है वो पढ़ के दिखा देते हैं हमको जब तक हमने अच्छी तरह उस पुस्तक को नहीं पढ़ाया और अपने जीवन में नहीं डाला है तो हम जब उनको देने जाएंगे तो लोगों के हृदय में तब परिवर्तन नहीं आएगा तो हमने एक सेमिनार लिया था बहुत साल पहले हाउ टू रीड प्रभुपाद बुक्स प्रभुपाद जी की पुस्तकें कैसे पढ़नी चाहिए अभी पूरा तो नहीं लूंगा मैं बहुत समय लगेगा बहुत बड़ा है उसमें जो तरीका बताया थोड़ा टेक्निकल है, वो हमारे आज की इस ऑडियंस के लिए चलेगा नहीं, जो एक्चुअल अच्छा तरीका है पढ़ने का। एक तरीका मैं बताता हूँ इसके अलावा भी, भुवनेश्वर प्रभु उसको बताते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था प्रभुपाद जी की पुस्तक कैसे पढ़नी चाहिए, उसमें उन्होंने एक तरीका बताया है। एक्चुअली बहुत सत्स्वरूप महाराज ने किताब लिखी है पूरी रीडिंग रिफॉर्म करके, कि अपने पढ़ाई को कैसे अच्छा करना चाहिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को के अध्ययन को कैसे और अच्छा बनाना चाहिए, पूरी पुस्तक लिखी है इस बात पर उन्होंने। तो बड़ा लंबा विषय है ये, क्योंकि हम लोग ब्रह्मचारी व्रत लिए हैं हम लोग, तो हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है प्रभुपाद जी की पुस्तकों के। पहले तो पढ़ने के लिए रुचि होनी चाहिए, हमारे अंदर इतनी रुचि नहीं है, मौका कोई सेवा का सेवा आती है तो भर जाते हैं पुस्तकें छोड़ के, तो सेवा है क्या करें, कैसे छोड़ सकते हैं सेवा को, पढ़ना भी सेवा है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना भी अपने लिए सेवा है, हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़कर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी का आदेश फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के आदेश हम सब लोगों के लिए उनकी पुस्तकों को ध्यान से अध्ययन करना, केवल पढ़ना नहीं। तो एक तरीका भुवनेश्वर प्रभु बताते हैं कि सबसे पहले तो पुस्तकों को जब पढ़ते हैं वो कहते हैं कि समय फिक्स करना चाहिए, ना कि पेजेस पन्ने, कि आज मैं कि रोज मैं 10 श्लोक पढ़ूंगा, रोज मैं 15 पन्ने पढ़ूंगा, ये नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं आधा घंटा पढ़ूंगा, एक घंटा पढ़ूंगा, जितना भी समय निर्धारित करना चाहते हैं। साधारणतः हमारे लिए एक पौना घंटा, आधा घंटा से एक घंटे के बीच में समय मिलना चाहिए हम लोग को पढ़ने के लिए। आधा घंटा भी मिल जाएगा फिर तो भी चलेगा, क्यों आपके लिए मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आप सुबह एक भागवतम क्लास सुनते हैं, दोपहर को क्लास सुनते हैं और शाम को क्लास सुनते हैं। प्रभुपाद जी बोले टोटल मिला के 2 घंटा मेरी पुस्तकों को पढ़ना या सुनना चाहिए, हम तो 2 घंटे से ज्यादा ऑलरेडी सुन रहे हैं, इसलिए कभी कभार हम ना भी पढ़ पाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतना सुनाया जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट क्यों बताया जा रहा है कि आगे जैसे जैसे भक्ति में आगे चलेंगे आपकी सेवाएं बढ़ती रहेंगी, अलग अलग जिम्मेदारी की सेवा आने लगेंगी। अब जैसे आप लोग की इतनी क्लासेस हो रही है कि मेरे लिए क्या है, मैं तो कुछ सुन नहीं रहा हूं और मैं अगर कुछ पढ़ू भी नहीं या सुनू भी नहीं तो मैं कैसे बोल पाऊंगा आप लोग को। ऐसे कुछ सालों बाद आप नहीं होंगे, एक एक आपने एक मंदिर में होंगे, एक एक भक्त प्रोग्राम चलाएंगे, तो उस टाइम ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट आएंगे, आप समझ में आएंगे। अभी तो ठीक है, आप इतना सुन रहे से कभी कभार नहीं पड़े, प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को बिल्कुल भी भक्ति में, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे जिम्मेदार की सेवा मिलने लगेंगी आप लोगों को, आएंगी बच नहीं सकते आप उससे, नेचुरल है वो स्वाभाविक। या तो बड़े मत भक्ति में तो नहीं आएंगी, लेकिन बढ़ेंगे भक्ति में तो नेचुरली आनी ही है, तो बढ़ना तो है ना भक्ति में, भगवान नाम से जाना है, ऐसा ही सेवा से बचने के लिए बढ़ेंगे नहीं भक्ति में, ठीक है पढ़ा नहीं थी, सेवा में प्रगति तो करनी है, सॉरी अपनी भक्ति में प्रगति करनी है, तो सेवा जिम्मेदारी की सेवा आएंगी, क्योंकि जितने ज्यादा हम जिम्मेदारी की सेवा लेते तो उतनी ज्यादा प्रगति भी होती है हमारी भक्ति में, उतने ज्यादा हमको हृदय में साक्षात्कार भी आते हैं। तो जब वो सेवाएं आएंगी तो कैसा होगा समय, जब ज्यादा सुनने का समय नहीं मिल पाएगा, समझिए भागवतम क्लास में आपको जैसा कि हमारे मंदिर में सब्जी परचेसिंग ले जाते हैं, भागवतम क्लास में सुनती है, जब ऐसा होता है तो हमको तुरंत समय निकालना चाहिए बाद में कुछ सुनने के लिए, अगर ये सब क्लासेस ना हो तो। देखिए ये क्लास का स्केड्यूल है हर मंदिर में थोड़े ना है, कितने मंदिर यहाँ पे इसमें न्यू भक्त प्रोग्राम होता है जिसमें ऐसे ऐसे क्लासेस होते हैं, ज्यादा नहीं है, जैसे जनरली मंदिर में भक्त आया चलो बस पार्टी में डालो भगा दिए हमको सुबह से शाम तक, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोई पढ़ा भी नहीं उनको, बेसिक जो पॉइंट बताती है हम शरीर नहीं आत्मा है कृष्ण भगवान है, चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो अभी, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता है। फिर वो लोग ज्यादा समय तो टिक नहीं पाते, टिकते हैं तो फिर सही तरह भगवत तत्वों को नहीं समझ पाते, तो कैसे भी भक्ति करते हैं ठीक से नहीं उनकी प्रगति हो पाती भक्ति में। जो साधारण व्यक्ति 1 साल में होती थी उनको 50 साल लगेंगे तब उतना प्रगति करने में, और शायद उतना हो भी ना पाएंगे। तो दुर्भाग्य की बात है अगर इस प्रकार से भक्ति की ट्रेनिंग प्रोग्राम ना हुए तो। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आगे जाकर जब समय नहीं मिल पाएगा ज्यादा आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में रेगुलरली क्लासेस सुनने का, फिर भी एक क्लास तो जरूर सुननी चाहिए, वह सुबह भागवतम क्लास। हमारा मैनेजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए सुबह के टाइम ज्यादा सेवा नहीं होनी चाहिए, 9 बजे तक ज्यादातर कोई सेवा नहीं होनी चाहिए, हम लोग अपना दिनचर्या ऐसे یہ تو مینجمنٹ کا کام ہے ایسا دیکھنا کہ آپ لوگ کے صبح 9 بجے تک سیوائیں نہ ہوں, اور ہوئے کوئی سیوا تو وہ ہفتے میں ایک دن یا دو دن ایسا میکسیمم ہوئے, ایسا نہیں کہ روز صبح کی آپ کی کلاس مس ہو رہی ہے پھر اچھا نہیں ہے ہم لوگ کے لیے. تو خیر بھوجن پور بتاتے ہیں کہ گھنٹہ فکس ہونا چاہیے کہ ایک گھنٹہ پڑھنا ہے یا آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے, جتنا بھی ہوئے ٹائم فکس کر لیجیے اپنے لیے. اور اس ٹائم میں جنرلی ہماری پڑھائی دو پرکار کی پڑھائی ہوتی ہے, ون از ریڈنگ فار پیوریفیکیشن, ون از ریڈنگ فار سروس. ایک ہوتا ہے اپنے شدھیکرن کے لیے پڑھنا, مطلب بھگوت گیتا اٹھائی اور یا کوئی چھوٹی بک اٹھائی اور پورا بک پڑھ لی, اگلی کتاب پوری کتاب پڑھ لی, سسٹمیٹکلی ایک ایک کر کے الگ الگ پروپا جی کی پستکیں پڑھنا, بھگوت گیتا پھر بھاگوت ہم کا پہلا سکند اٹھایا اس کو ایک ایک شلوک کر کے آگے پڑھتے گئے چلتے چلے گئے. سسٹمیٹک ریڈنگ یہ ایک پرکار کی ریڈنگ ہوتی ہے خود کے شدھیکرن کے لیے. تو اس ٹائم ہمیں سوچنا چاہیے ایسا کہ ابھی ہم روپا جی کی پستکوں کا آشرا لے رہے ہیں, روپا جی آپ میرے کو وہ گیان دیجیے جس سے میں اپنی سیواؤں کو ٹھیک بھاونا سے کر سکوں, ان کا آشرا لیتے ہوئے ان کو پڑھنا چاہیے. اس لیے ہم لوگوں نے اپنے مندر میں ہمیں لائبریری کا نام رکھا تھا شرناگتی, ہم روپا جی کی پستکوں کی شرن لینے جا رہے ہیں اس جگہ پر. اور دوسری پرکار کی پڑھائی ہوتی ہے سیوا کے لیے پڑھنا, مطلب یہ ہر ایک کے لیے ابھی آج کی تاریخ میں اپلیکیبل تو شاید نہیں ہوگا, جیسے کوئی گرہست ہیں فار ایگزامپل, تو ان کے لیے ان کو کچھ بھاگوتم سے یا پستکوں سے ایسے سیکشن پڑھنے چاہیے جہاں ان پتی پتنی کو ایک دوسرے سے کیسے سمبندھ رکھنا چاہیے اس کے بارے میں روپا جی نے بتایا ہے. جیسے کسی کے بک ڈسٹریبیوشن سیوا ہے تو بک ڈسٹریبیوشن کے بارے میں کچھ اس سے سمبندھت کچھ روپا جی کے پوائنٹس شاستروں میں جو روپا جی نے دیے اپنی پستکوں میں ان کو پڑھنا چاہیے. جو بھی ہماری سیوا ہے اس سے سمبندھت کچھ چیزیں پڑھنی چاہیے ہمیں, ایک پرکار کی ریڈنگ ہوتی ہے. اور ایک اور پرکار کی بھی ریڈنگ ہوتی ہے ویسے تیسری, لیکن اس کو الگ کیٹیگری تو نہیں دیتے لیکن پھر بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ہے پرچار کرنے کے لیے پڑھنا, پروچن دینے کے لیے پڑھنا, اس کے لیے بھی ایک پرکار کا ہم لوگ ریڈنگ کرتے ہیں. تو ان تینوں اور بھی پرکار کی ہو سکتی ہیں ویسے, لیکن ان پرکار کی ریڈنگ میں بیلنس ہونا چاہیے ہمارا, مطلب ایسا نہیں کہ کیول شدھیکرن کے لیے پڑھتے رہے سیوا کے لیے کچھ نہ پڑھے, یہ سیوا کے لیے پڑھتے رہے شدھیکرن کے لیے کچھ نہ پڑھے. کئی لوگ ہوتے ہیں پرچار میں اتنا ویست رہتے ہیں پرچار کے لیے بس پڑھتے ہیں, بس وہی ان کی پڑھائی ہوتی ہے. وہ دیوان کو بتا رہے تھے, میں دیوان سے پوچھ رہا تھا بھائی آپ کتنی کلاسز ہوتی ہیں, آپ دو گھنٹہ اس کے لیے کیا پریپئر کرتے ہیں, آپ وہ ڈیڑھ دو گھنٹہ پریپئر کرتے ہیں. میں پوچھا کہ دو گھنٹہ آپ تک اتنا پریپئر کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, بولا کیا ہے میرے کو پڑھنے کا ٹائم تو ملتا نہیں, تو جب یہ دو گھنٹہ کا ٹائم ملتا ہے اس میں میں ایکسٹرا بھی پڑھ لیتا ہوں اپنا, اس سے سمبندھت کوئی آگے پیچھے کی کچھ چیزیں ہیں, مطلب اپنے شدھیکرن کے لیے بھی ساتھ ساتھ پورا کر لیتا ہوں میں. تو پرچار کے لیے بھی پڑھ لیا, پروچن دینے گئے اور اپنے شدھیکرن کے لیے پورا کر لیا, دونوں بیلنس کر لیا انہوں نے, کرتے رہتے ہیں وہ اپنے ایسا بیلنس. تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی, ابھی تو دیکھیں آپ لوگ کا اتنا پرچار نہیں ہے ابھی تو اس لیے اتنا بڑی بات ہے, لیکن آگے جا کر ہم سے ادھکتر لوگ ہیں جو جا کے پروچن دیں گے. تو ایسا سمے آئے گا ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا دن میں ایک ہفتے میں 15 پروچن. اگر ایسا جیون جینا ہے تو اس میں بہت کٹھن ہو جاتا ہے, پھر دن بھر یہاں دن میں دو دو تین تین پروچن, صبح ایک جگہ دوپہر کو ایک جگہ شام کو تیسری جگہ, ایسا ٹریولنگ کر رہے ہیں سارا سمے, یا تو ٹریولنگ میں جا رہا ہے یا بولنے میں جا رہا ہے, تو تھوڑا سمے ملتا ہے اس میں کوئی ویکتی کا دکھ سے ملنے آتا ہے, پرسنل کاؤنسلنگ, اس میں سارا سمے نکل جاتا ہے. لیکن پھر بھی برہمچاری کو سمے نکالنا چاہیے اپنے شدھیکرن کے لیے پڑھنے کے لیے, کیول پرچار کے لیے پڑھتے پڑھتے تو بھاونا ٹھیک نہیں جائے گی, پھر پرچار کس ٹائم پر کرے گا. ایک کیا نام ہے ہمارا, داسانو داس داس, وہ بھول جائیں گے اپنا نام, اس لیے ہم داسوں کے داسوں کے داس ہیں, اس بات کو بھول کے پرچارک ہے, بک وترنکار ہے, اس کا ایسا اسٹمپ کیا, بک ڈسٹریبیوٹر, ٹیچر, ہم لوگ سب اس کا ایک چھپا لگا گھومتے ہیں, ہم کک ہیں, جس ٹائم مطلب ہم کو یہ سیوا کے لیے بولو ہم دیکھتے نہیں, ہم کک ہیں, ہم یہ ہیں یہ ہیں. جب پڑھیں گے نہیں ریگولر پروپر جی پستک تو ایسے چھپے آ کے لگ جائیں گے ہمارے اوپر, اور اس سے ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے لگیں گے, سمجھنے لگیں گے ہم یہ ہیں, جس سے لوگ ہمیں پکار رہے ہیں وہ ہیں, ہم ایسا سوچنے لگ جاتے ہیں. होता है ऐसा कभी कभी मंदिरों में ब्रह्मचारी के साथ, खासकर पांच पांच दस दस साल तक उनकी एक सेवा रहती है, 20 साल से कुक कुकिंग कर रहा है, तो 10 साल से कुकुतर नहीं कर रहा है, 15 साल से पुजारी सेवा ही कर रहा है, तो लोगों को देखते ही पुजारी आ गए, गाने खान के पुजारी है या लिखा है क्या पुजारी है, नहीं लेकिन क्योंकि इतने सालों से सेवा कर रहे हैं तो उनको कोई स्टैंप लगा देते हैं, लेकिन अंदर से हमारे एक ही स्टैंप होना चाहिए जो हम सबको कॉमन स्टैंप है, उसको नहीं भूलना चाहिए। वो जब ही याद रहेगा अगर हम रेगुलरली रूपा जी की पुस्तक के शुद्धिकरण के लिए पढ़ते हैं तो बहुत जरूरी है। ये देखिए ये आहार है हमारे आध्यात्मिक जीवन का, अगर आप भोजन नहीं करेंगे प्रसाद नहीं लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, मर भी सकते हैं। उसी प्रकार रोज रूपा जी की पुस्तकें नहीं पढ़ी आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, मर जाएंगे भी भक्ति में, मतलब भक्ति छोड़ देंगे। ऐसा मत सोचिए ऐसा हो सकता है, होता है, हुआ है, हो रहा है और होएगा भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो। कितने भक्त ऐसे हैं जो कि आध्यात्मिक रूप से एकदम कमजोर हो गए थे, मेरे को बहुत लोगों भक्तों ने मैंने सारी बात फोन करके बताया अलग अलग मंदिरों से कि मुझे पुस्तकें तो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन कर ली अंदर से खोखले हो गए, क्यों क्योंकि इतनी सेवा में लगे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेरा समझ खासकर बिल्कुल नहीं पड़े। और कई मंदिरों में देखा जाता है 10 भक्त भूमि के लिए गए 8 लौटे नहीं टिक पाते वो लोग, इतना इतना देना 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 लेकिन कुछ लेते नहीं। लेकिन कई लोग दूसरे कैटेगरी में चले जाते हैं, दूसरी कैटेगरी क्या है, दिन भर कुछ ना कुछ श्रवण करना या पढ़ते रहना, किताबों में घुसे रहते हैं हमेशा, सेवा के नाम से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हाथ में सेवा नहीं कर पाऊंगा, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम चाहिए आज, कल रात को बहुत 2 बजे तक सोने में, क्यों 2 बजे तक पढ़ रहे थे क्योंकि मैं सेवा नहीं करेंगे। एक भक्त है मतलब हमें जब भी उनको देखते थे उनके शरीर से ईयरफोन कभी अलग नहीं होते थे, बस नहाते टाइम शायद अलग करते होंगे, बाकी कॉन्स्टेंट अंदर घुसा रहता था। एक तरीके से अच्छा है लेकिन फिर सेवा भी तो होनी चाहिए साथ साथ, लेकिन वो कुछ यहाँ चुप कहीं चले जाते थे कोने में, किसी मंदिर के कोने में बैठे रहते थे, उनको उन्होंने नाम दिया श्रवणाचार्य, हमेशा श्रवण 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 श्रवण, 2-3 साल ब्रह्मचारी रहे कि शादी कर ली नहीं ब्रह्मचारी अपूर्व इतना श्रवण क्यों ना पोपट जी पुस्तकें पढ़ी, हाँ लेकिन सेवा वहां ढीले हो गए। और दूसरी तरफ हजारों ऐसे उदाहरण है जिन्होंने सेवा 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 करने के भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा भागते भागते तुम चले गए बाहर ही लौटे ही नहीं, वैसे तो बहुत देखा जाता है क्योंकि श्रवण नहीं किया। नित्यम भागवत सेवया नित्यम योज भगवान जी बहुत कुछ होता है, जब भागवत सप्ताह के बारे में सप्ताह भागवत सेवा किधर लिखा है, नित्यम भागवत सेवा शास्त्र बोलते हैं, रोज भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो बता दें एक बार प्रभुपाद जी के प्रवचन से उठ के एक भक्त चला गया था, 15 मिनट का प्रवचन हुआ था लॉस एंजलिस में न्यूयॉर्क में, तो एक भक्त उठ के चला गया था, प्रभुपाद जी ने बाकी का सारा प्रवचन उसको डांटते हुए बोला, उसकी डांट ही लगे पूरे प्रवचन में, सोचता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भक्त तो प्रभुपाद जी ने यहां तक बोला वो भक्त पूरे प्रवचन में सोता था, ऐसा ही थोड़ा उठते सोना उठता सोना सोता ही रहता था, तो बाजी बाजू 22 घंटा सो 23 घंटा सो लेकिन 1 घंटा प्रवचन में ध्यान से बैठो, ये प्रभाजी प्रवचन लेने आते थे लोग नहीं सुनते थे उनको बहुत बुरा लगता था कि लोग अपनी आध्यात्मिक सेहत की चिंता नहीं कर रहे हैं, इतने लापरवाह हो गए आध्यात्मिक स्तर पे। सबसे पहले हमको जरूरत समझनी चाहिए, हमारी आध्यात्मिक जरूरत है रूपा जी की पुस्तकें पढ़ना और श्रवण करना, ऐसा नहीं टाइम मिलेगा तो सुन लेंगे, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, टाइम मिलेगा नहीं टाइम तो निकालना पड़ता है, थोड़ा टाइम मिल रहा बटरा के टाइम जाकर लेके आ जाएंगे फिर पढ़ लेंगे, जरूरी है हमारे लिए, हम दिन में ऐसा इस प्रकार से अपना दिन सेट करना चाहिए कि पढ़ने के लिए। और आप लोग को टाइम दिया नहीं वक्त प्रोग्राम में, रोज शाम दोपहर का टाइम 3 से 5 के बीच का टाइम है, तो ऐसे कम से कम 1.5 घंटा निकाल के आप लोगों को पढ़ना चाहिए रोज। मतलब उसने कभी क्या हफ्ते में 1 दिन 7 घंटे पढ़ने हो जाएगा ना, 1 दिन ऑफ ले लेंगे 7 घंटे पढ़ लेंगे। अब ऐसा करते हैं हफ्ते में 1 दिन खाते हैं, बाकी 7 दिन नहीं खाए चलेगा ना, 1 दिन 7 दिन का खा लेंगे, नहीं रोज खाना होता है। इसी प्रकार रोज 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 पढ़ना है गोपाल जी की पुस्तक, थोड़ा समय निकाल के कुछ नहीं तो 15-20 मिनट पढ़ लेंगे। हाँ आप लोगों के लिए क्या निवर्तक प्रोग्राम में इतना अच्छा माहौल है कि नहीं भी पढ़ा कोई कोई दिन चल जाएगा, तो फिर भी जरूरी है पढ़ना, 15-20 मिनट तो निकालना ही चाहिए पढ़ने के लिए कुछ थोड़ा सा। तो भोजन बता रहे थे 1 मिनट बस इनका पॉइंट खत्म कर दूं, टाइम फिक्स करना चाहिए समझो, 1 घंटा आपने निर्धारित किया, और जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं रेगुलरली वो पुस्तक को खोलें और 1 घंटे में आप पढ़ना चालू करें। पढ़ते 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 कोई ऐसा पॉइंट आया जो आपको बड़ा क्या पॉइंट है, प्रभुपाद जी ने कितना फर्स्ट क्लास पॉइंट बोला, बाहर जाना चाहिए थोड़ी देर उसके साथ चिंतन करना चाहिए। जैसे मैं एक बार पढ़ रहा था एक भागवतम का एक तात्पर्य, उसमें भगवान जी लिखते हैं कि द पोटेंसी ऑफ द स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन इज नॉट डिमिनिश्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द वाइब्रेटर, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन डोंट लूज देयर पोटेंसी इन द एब्सेंस ऑफ द वाइब्रेटर। कि अगर वाइब्रेटर मतलब बोलने वाला व्यक्ति अगर सामने ना भी हो, मतलब कहने का था कि कैसेट से हम सुन रहे हैं प्रवचन, सीडी से कैसेट से कोई प्रवचन सुन रहे हैं, तो उसमें सुनने में और उस व्यक्ति से सुनने में उसकी वाणी में जो शक्ति है वो उतनी ही हमको मिलती है, चाहे हम उसके सामने बैठ के सुने चाहे हम कैसेट से सुने। हालांकि सामने बैठ के सुनने में एक फायदा है कि भक्तों का संग मिल रहा है, और दूसरा फायदा है एक माहौल है सुनने का। क्या होता है कमरे में बैठ के हम सुनते हैं तो बीच में कुछ कपड़े कपड़े समेट लिया, थोड़ा थोड़ा ये कर ले, थोड़ा प्रसाद लेते हुए सुन लिया, थोड़ा ये करते करते सुन लिया, वो सुनने में और यहाँ बैठकर केवल सुनना, इसमें अंतर होता है। लेकिन कोई अगर एकदम ऐसे बैठे केवल अलग से सीडी लेकर एक कैसेट लेकर ध्यान से सुने तो उसको भी बहुत शुद्ध देखकर मिलता है। लेकिन सुनता ये बोलने वाले की शक्ति, ये बोलने वाले की जो आवाज में जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बराबर रहती है। तो जब मैंने पहली बार ये पॉइंट पढ़ा तो उनको लगा हाँ ये प्रभुपाद जी खुद ये वाक्य बोले हैं, कि ऐसा ही सोचना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं कृष्ण अर्जुन तो कृष्ण के साथ थे, इसमें उन्होंने कृष्ण से डायरेक्ट गीता सुनने को मिला, इसका सौभाग्य हम लोग को तो कहाँ है, अभी कृष्ण कहाँ है, हम लोग को डायरेक्ट कहाँ मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा में जो हम तक गीता आ रही हो एज इट इज है, उसमें उतनी शक्ति है जो हम प्रभुपाद जी की गीता पढ़ते हैं जितना अर्जुन ये भगवान कृष्ण से सुन रहे थे, दोनों में कोई अंतर नहीं है आध्यात्मिक शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब कहने का मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये कि मैंने जब ये पॉइंट पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, तो थोड़ा रुक गया मैं उसमें स्मरण करने लगा कि हाँ कितना अच्छा बात भगवान जी बोला। तो कभी कभी हम कैसे सुनते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको तो व्यक्ति का संग नहीं मिल रहा है। कभी कभी लोग बोलते गुरु का हमें संग नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता संग, आपके पास रोज गुरु का संग मिलने के लिए उनकी वाणी रिकॉर्डेड है, आप उसको सुने गुरु का उतना ही संग मिलता है आपको जितना वहां बैठे उनसे प्रवचन सुने। तो स्वभाव मेरे को उस दिन जब मैं पढ़ा था ये पॉइंट मेरे को अच्छा लगा, मैं इस पर थोड़ा चिंतन किया, इससे संबंधित उदाहरण को याद किया, अपने जीवन में इसको कैसे उतार सकता हूं उसके बारे में थोड़ा चिंतन किया, बस 15 मिनट बिताए फिर आगे पढ़ना चालू किया। कहने का है इस प्रकार से हमको कभी कभी ऐसा हो सकता है 1 घंटे में आप एक ही तात्पर्य पढ़े गीता का या भागवत का, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 10-15 तात्पर्य चले जाएंगे, कोई ऐसा पॉइंट आया नहीं जो आपको बहुत स्ट्राइक किया हो। तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना चाहिए, श्लोक अनुवाद तात्पर्य पढ़ना, शब्दार्थ भी पढ़ सकते हैं। कई लोग क्या है कभी कभी अनुवाद पढ़ते हैं बस श्लोक अनुवाद करके, कई लोगों को बताया कि हम लोग ऐसे पूरी किताब पढ़ते हैं पहले, लेकिन जैसे मैं पहले वो बताया था 95% एडवांसमेंट वहीं प्रपोर्ट से होती है। रिपोर्ट्स पढ़ना तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में बताया कैसे जीवन में उतारना उस श्लोक को। केवल ज्ञान लेने से क्या लाभ अगर उसको हम उतार ना सके अपने जीवन में। तो ये जब इस प्रकार से जब पढ़ते हैं, जब भोजन प्रभु जैसे बताया कि पढ़ते पढ़ते एक जगह बहुत अच्छा पॉइंट लगा मालूम जाए, थोड़ा उसको चिंतन करें, चाहिए तो कहीं और लिख लें ऐसे पॉइंट्स को। अब देखो मेरे कमरे में कई सारे कागज पर लिखे हुए पॉइंट्स, तो कैसे आए वो सारे पॉइंट्स, ऐसे ही आए पढ़ते पढ़ते कोई अच्छा सा पॉइंट लगा नोट कर लिया उसको, मैंने अच्छा लगा उसको नोट कर लिया, उसको बार 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 पढ़ते रहते इससे वो अंदर उतर जाता है बिल्कुल कहते हुए। तो इस प्रकार से पढ़ के थोड़ा स्पष्ट कोई अच्छा पॉइंट पर उसको थोड़ा चिंतन करके फिर आ गया, तो कोई दूसरा पॉइंट आ गया, एक दो पॉइंट से ज्यादा नहीं आना चाहिए एक दिन में, नहीं तो भूल जाएंगे फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो वही पॉइंट को पढ़ के जीवन में उतारे, ज्यादा भी पॉइंट सुनेंगे तो तकलीफ होगी, और एक पॉइंट तो आना ही चाहिए कम से कम, ऐसा एक पॉइंट आ गया बस उस पॉइंट को चरमन करते रहे, इतना अच्छा पॉइंट बोला, दो भक्त को जाके बताएं। एक भक्त है जो मैं जानता हूँ, वो बोलते हैं मैं जो भी पॉइंट पढ़ता हूँ सुबह आठ भक्तों को कम से कम बताता हूँ, मैं उसके बाद रात को एकदम मेरे सोने से पहले फिर उसको सोच कर सो जाता हूँ, एकदम अंदर चले जाता है वो पॉइंट। टीचिंग इज लर्निंग ट्वाइस, जिसको कुछ पढ़ाना है बोलना उसे खुद को दो बार पढ़ने के समान है वो, इसलिए बहुत अच्छी आदत है ये, जो हमने पढ़ा दूसरे भक्तों को जाके बताएं। हम तो इतने सारे भक्तों के साथ में रहते हैं, शाम को जब हम लोग मिलते हैं हम लोग को चर्चा करनी चाहिए इस प्रकार से, आज हमने क्या पढ़ा अभी ये सुनिए अभी बहुत अच्छा एक पॉइंट बस, ऐसा नहीं सारी कथा बताएं क्या पढ़ा आपने सारा तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन एक पॉइंट अच्छा लगा शेयर करें अपने दूसरे भक्त से, वो अपना एक पॉइंट आपसे शेयर करेगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है उसका पॉइंट आपको और भी अच्छा लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, और कभी कभी आपका पॉइंट उसको अच्छा लग सकता है, तो यही भक्त को करना चाहिए जब वो साथ में आते हैं। तो कभी कभी भक्त पूछते तो जी साथ में आकर क्या चर्चा करें, मत चित्त मत गत प्राण बोध अंत परस्पर भगवान बोलते हैं साथ में भक्तों की चर्चा करनी चाहिए, क्या चर्चा करेंगे सारा दिन, एक एक दो दो घंटे कभी कभी साथ में रहते हैं क्या करेंगे चर्चा, अरे कितना है चर्चा करने के लिए, इतने शास्त्र हैं, खासकर हम लोग को अपने साक्षात्कार शेयर करने चाहिए, यह हमारी प्रगति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमने कुछ पढ़ा है कुछ अनुभव किया जीवन में जिसे भक्तों को बताना चाहिए, थोड़ा समय हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए जब कभी शाम को या रात को, हम लोग ऐसा रेगुलर करते हैं जब प्रचार करके आते थे कोई ऐसा लड़का मिला एक बदमाश एकदम बहुत ईर्ष्या लोग, तो उसको साक्षात्कार हुआ, देखो कैसे लोग भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, भगवान का नाम लेते ही क्रोधित हो गया हो, ऐसे लोग होते हैं। यह एक बार को याद है मैं एक प्रवचन से रात को लौटा था करीब 11 बजे, तो रिक्शे वाले ने ऑटो रिक्शा होती है पुणे में, ऑटो रिक्शा ने छोड़ा उतरते थे बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, तो भक्त जैसे बोला वो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे कैसे याद है आपको, क्या क्या याद है प्रभु जी, क्या भूल गए आप, सॉरी नहीं याद है मेरे को, क्या बोल रहे हैं आप, से 4 साल पहले एक दिन 4:30 बजे की बात को पूरा याद है, वो बोला 4:30 बजे आपके भक्तों दिल्ली बम्बई में दादर के रेलवे स्टेशन पे लोकल पकड़ने के लिए खड़े थे, और तब मैं वहां पे आया था और आप लोगों ने मुझे ये चिट निकाली, उसने चिट